values and spirituality for overcoming challenges. आज के इस उद्घाटन सत्र में आप सबका यहाँ दिल से स्वागत करते हैं. कुछ और नए लोग आज ज्वाइन हुए हैं, शायद कल के अलावा आज सवेरे भी कुछ लोग आए हैं. हम सब इन सत्रों का पूरा पूरा लाभ तो लेंगे ही, लेकिन साथ साथ इन तीन दिनों में यहाँ से ये जरूर सीख कर जाएंगे कि ये वैल्यूज हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कैसे एप्लीकेबल हों, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग दिस वैल्यूज इन आवर लाइव्स. बहुत समय से गुरुकुल पद्धति छूटने के बाद और लॉर्ड मैकॉले का एजुकेशन सिस्टम फॉलो करने के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में पूरा बदलाव आया. वो एजुकेशन सिस्टम जो टोटली वैल्यूज पर आधारित था, जहां बच्चे जाते थे और गुरु ये डिसाइड करता था कि किस बच्चे के लिए करिकुलम क्या होना चाहिए, लेकिन आज का सिनेरियो ये है कि हर बच्चे के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में जो भी है उसके लिए हमारे पास एक सा करिकुलम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी क्या एबिलिटीज हैं, क्षमताएं हैं, उन सब का कोई काउंटिंग नहीं होता इसमें, एंड ही हैज टू डिवोट दैट मच टाइम. लेकिन हमारा पुराना जो सिस्टम था भारत का, प्राचीन पद्धति जो थी, वो फुल्ली वैल्यूज पर आधारित थी. ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे हम उन वैल्यूज को छोड़ते गए? तो ऊपरी तौर पर तो विकास हमने बहुत किया, मटेरियलिज्म की तरफ हमने बहुत प्राप्तियां की, बट व्हाट अबाउट आवर इनर रिचनेस? हमारी जो इनर रिचनेस है वो वैल्यूज के कारण है. और ये एक बहुत समझने की बात है कि हम सबको वैल्यूज पसंद है. हम में से कौन ऐसा होगा जिसे प्रेम पसंद नहीं, शांति पसंद नहीं, आनंद पसंद नहीं? एवरीबडी लाइक्स पीस, एवरीबडी लव्स टू बी लव्ड, एवरीबडी वॉन्ट्स ब्लिस. बट इन सब के लिए बेस क्या है, आधार क्या है? हम सब की इतनी चाहत है, कहा जाता है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. नाउ वी ऑल वॉन्ट देम बैडली, वी आर इन द नीड ऑफ दिस वैल्यूज. पर ऐसा कौन सा रास्ता है जो हमें मिल नहीं रहा और जिसके कारण ये चीजें हमारी लाइफ में नहीं आ रही? प्योरिटी हम सबको पसंद है, पर क्या प्योरिटी की प्रैक्टिस करने के लिए हम तैयार हैं? पीस हम सबको पसंद है, पर क्या पीस की प्रैक्टिस करने के लिए हम तैयार हैं? और जब ये प्रैक्टिसेस हम करना शुरू करते हैं तो कौन से चैलेंजेस हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं? इन सभी बातों पर डिस्कशन होगा इस पूरे कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत विभिन्न सत्रों में. तो आप सबसे निवेदन है कि इसके हर एक सत्र का भरपूर आनंद लें और इस आनंद के साथ भरपूर होकर फिर आप जाएं. सत्र इस इनॉग्रेशन सेशन की शुरुआत में हम 2 मिनट परमात्मा की याद में स्थित होते हैं. मधुर वाणी ग्रुप हमारा एक बहुत सुंदर ग्रुप है, सिंगिंग ग्रुप. इनके पास हर समय के लिए एक बहुत अच्छी शब्दावली के साथ एक बहुत अच्छी लय और ताल होती है. तो ये परमात्मा की याद शुरू करें इसके पहले हम आमंत्रित करते हैं अपने सभी गेस्ट्स को डायस पर, और हमारे जो भी मंच पर आने वाले महानुभाव हैं उन सबको हम इनवाइट करते हैं. आदरणीय डॉक्टर आरपी गुप्ता जी, आदरणीय डॉक्टर आरपी गुप्ता जी, आप कृपया स्टेज पर आकर अपना आदरणीय स्थान ग्रहण करें. आदरणीय डॉक्टर बीके पांड्यामणि जी, आदरणीय डॉक्टर बीके पांड्यामणि जी, आप भी स्टेज पर आकर अपना आदरणीय स्थान ग्रहण करें और हमारे इस विंग के चेयरपर्सन जिनके संकल्पों से और जिनकी शक्ति से ये कार्यक्रम आप सबके लिए आयोजित हो पाता है, ऐसे हमारे आदरणीय राजयोगी डॉक्टर बी के मृत्युंजय भाई जी, इस चेयरपर्सन एजुकेशन विंग ऑफ राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। आई ऑल्सो इन्वाइट डॉक्टर मोहित गंभीर, ही इज डायरेक्टर MHRD इनोवेशन सेल AICTE दिल्ली। डॉक्टर मोहित गंभीर, प्रोफेसर हिमांशु पंड्या जी, प्रोफेसर हिमांशु पंड्या जी ही इज वाइस चांसलर गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। राजयोगिनी आदरणीय दीदी बी के शीलू जी, राजयोगिनी आदरणीय दीदी बी के शीलू जी, शी इज वाइस चेयरपर्सन एजुकेशन विंग RENRF। डॉक्टर गणपति भास्करन, वाइस चांसलर तमिल यूनिवर्सिटी तंजावुर। डॉक्टर गणपति भास्करन, वाइस चांसलर तमिल यूनिवर्सिटी तंजावुर, आपका भी हम स्टेज पर स्वागत करते हैं। डॉक्टर बी के वेद गुलियानी जी, ब्रदर डॉक्टर बी के वेद गुलियानी जी, आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया स्टेज पर आकर अपना आदरणीय स्थान ग्रहण करें। और हम अपनी बी के सिस्टर्स से निवेदन करते हैं कि हमारे सभी मंचासीन अतिथियों और आदरणीय भाई एवं बहनों को पुष्प गुच्छ देकर बैचेस से बुके से स्वागत करें। स्वागत के बोल, स्वागत के पुष्प और स्वागत के हृदय के ये उद्गार। आर बी के सिस्टर्स विल प्लीज वेलकम आर गेस्ट बाय बुकेस एंड बैचेस। स्वागत तरह तरह से होता है, लेकिन पुष्प हमेशा अपने साथ खुशबू लेकर आते हैं और ये खुशबू सारे फिजा को महकाती है। मधुर वाणी ग्रुप के आने के पहले ये पुष्पों की मधुर खुशबू आप तक भी पहुंच जाए। आइए हम सब इस स्वागत में तालियों के साथ शरीक होते हैं। प्लीज ज्वाइन योर हैंड्स और हमारे सभी गेस्ट का दिल से हम स्वागत करते हैं। बैजेस, बुके, दिल के उद्गार, आपकी तालियां और पीछे से म्यूजिक, हमारी सभी कर्मेंद्रियां एकाग्र होकर अपने अतिथियों का स्वागत कर रही हैं। वी थैंक आर बीके सिस्टर्स फॉर वेलकमिंग आर गेस्ट। एंड नाउ आई इनवाइट मधुरवाणी ग्रुप। मधुरवाणी ग्रुप के इस सॉन्ग के साथ हम 2 मिनट परमात्मा की याद में भी स्थित होंगे। हमारे हर कार्यक्रम में जो सुप्रीम टीचर है, परम शिक्षक, परम पिता परमात्मा के हम सब बच्चे, तो उस परम शिक्षक की याद से आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। क्योंकि जिन वैल्यूज का हम आवाहन कर रहे हैं, उन वैल्यूज और वर्चुज का स्रोत वही परम शिक्षक परम पिता है। आइए उनकी याद के साथ मधुरवाणी ग्रुप से ये मीठा गीत भी सुनते हैं। ये ग्रुप अपने आप में नायाब ग्रुप है। हर दिन यहाँ प्रोग्राम्स होते रहते हैं और हर दिन एक नया गीत इनके पास होता है। हमारे सतीश भाई इस ग्रुप को बहुत समय से संचालित कर रहे हैं और बहुत प्यार से वो हमारे सभी प्रोग्राम्स के लिए गीत लिखते हैं। इस क्विक कवि लाइक फास्ट लिखते हैं, तुरंत लय ताल देते हैं और हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं मधुरवाणी ग्रुप।
ओम शांति। फिर सजा है ज्ञान सरोवर ये सुंदर दरबार, शिक्षा जगत की हस्तियों का स्वागत सौ सौ बार, स्वागत सौ सौ बार। मिले मूल्य अध्यात्म का शिक्षा को आधार, मिले मूल्य अध्यात्म का शिक्षा को आधार, आए मनीषी मंथन को अभिनंदन बारंबार, अभिनंदन बारंबार, अभिनंदन बारंबार। जोरदार तालियों के साथ इन अभिन सबको स्वागत करें।
सजा है ज्ञान सरोवर ये सुंदर दरबार, सजा है ज्ञान सरोवर ये सुंदर दरबार। शिक्षा जगत की हस्तियों का, शिक्षा जगत की हस्तियों का स्वागत सौ सौ बार। सजा है ज्ञान सरोवर ये सुंदर दरबार, मिले मूल्य आध्यात्म का शिक्षा को आधार, आए मूल्य आध्यात्म का शिक्षा को आधार, आए मनीषी मंथन को, आए मनीषी मंथन को अभिनंदन बारंबार।
आपकी कर्तव्य ध्वनि साथ होनी चाहिए।
खिले चुनिंदा फूलों का ये प्यारा गुलदस्ता है, सशक्त शिक्षक बनता तो सुंदर समाज बनता है। शिक्षा को एक नई दिशा देने की आवश्यकता, मूल्य और आध्यात्म बिना ये संभव ना हो सकता। मूल्यों का वो परम स्रोत है, मूल्यों का वो परम स्रोत है, आपको रहा पुकार। स्वागत सौ सौ बार, अभिनंदन बारंबार। परिभाषा परम पिता बतलाते हैं, स्वयं विधाता शिक्षक बनकर हमको रोज पढ़ाते हैं। दानव जैसे मानव को वो देवता बनाते हैं, हीरे जैसा जीवन देकर दैवी दुनिया लाते हैं। नए विश्व के लिए नया ज्ञान, नए विश्व के लिए नया ज्ञान देते हैं उपहार। स्वागत सौ सौ बार, अभिनंदन बारंबार। परिवर्तन का लिए पता का निकली ब्रह्म कुमारियां, मूल और आध्यात्मिकता से सींच रही जग क्यारियां। आप बिना ईश्वर की योजना सचमुच रही अधूरी है, सफल बनाने आपका आना इसमें बहुत जरूरी है। भाग्यवान है भगवान का, भाग्यवान है भगवान का, स्वीकारे सत्कार स्वागत सौ सौ बार अभिनंदन बारंबार। फिर सजा है ज्ञान सरोवर ये सुंदर दरबार, शिक्षा जगत की हस्तियों का स्वागत सौ सौ बार, स्वागत सौ सौ बार अभिनंदन बारंबार, स्वागत सौ सौ बार अभिनंदन बारंबार।
बहुत खूब मधुरवाणी ग्रुप, हमारे भाइयों ने सभी के दिलों के उद्गारों को बहुत सुंदर तरीके से शब्दों में पिरोकर आप सबके सम्मुख रखा। अभी स्वागत की कड़ी में एक नन्ही बालिका के कुछ उद्गार बाकी हैं। कुमारी दान्या आ रही हैं दिल्ली से आपके सामने एक सुंदर स्वागत नृत्य लेकर। कुमारी दान्या,
स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम,
शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम।
अपने हर्ष का मिलता कहीं अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम
सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से।
मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से।
स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम, महका चिर बसंत है।
आगमन से आपके आनंद ही आनंद है।
शुभ स्वागतम
शत स्वागतम,
शुभ स्वागतम
शत स्वागतम
शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे, साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना, अपनों का संबंध है।
आगमन से आपके आनंद ही आनंद है।
शुभ स्वागतम,
शुभ स्वागतम।
स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है, राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है।
स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है, राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है।
तभी तो परिवर्तन का नारा, तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है।
आगमन से आपके आनंद ही आनंद है,
आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अनंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम,
शुभ स्वागतम,
शुभ स्वागतम।
थैंक यू दान्या, आपके थिरकते कदमों ने पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया। हमारे गेस्ट्स भी रह नहीं पाए हैं, उठकर दान्या के स्वागत में सामने आ गए हैं। आज हमारे बीच जो हस्तियां बैठी हैं मंच पर, सभी हस्तियों के अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है ये सच मानिए अगर मैंने ये सुनाना शुरू किया तो 1 बज जाएगा मुझे, ओनली रीडिंग देयर बाय द टच, सो आई अपोलोजाइज। और माफी के साथ मैं उनके शॉर्ट इंट्रोडक्शन देकर सबको आपके सामने इनवाइट कर रही हूँ, लेकिन सच मानिए यहाँ जो भी बैठे हैं वो सब बड़े बड़े अवार्ड अचीवर्स, बहुत सारी प्राप्तियां उपलब्ध की हुई हस्तियां हैं। सबसे पहले वेलकम स्पीच के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर बीके डॉक्टर आरपी गुप्ता। ही इज हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज आरईआरएफ। ही इज स्टेशनड हियर इन ज्ञान सरोवर सिंस 2009। एकेडमिकली ही इज एमकॉम, एमफिल, पीएचडी, एमएससी वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी विद अ डिप्लोमा इन लॉ ऑफ टैक्सेशन। ड्यूरिंग दिस टेन्योर ऑफ हिज career in education he was not only the life member of organizations like Indian Commerce Association, Indian Accounting Association, Research Development Association, etc., but also he has completed the projects which are sponsored by UGC like Urban Cooperative Banks in Northern Region, Problems and Prospects, Taxation Policy and Foreign Investment, Working of Scheduled Urban Cooperative Banking in India, etc. A former principal of ST Postgraduate College, पानीपत हरियाणा डॉक्टर बीके आरके गुप्ता आरपी गुप्ता।
जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए पंडित को मंदिर में रहीम नजर आए सूरत ही बदल जाएगी इस दुनिया की जब इंसान को इंसान में नजर आए। परम आदरणीय राजयोगी मृत्युंजय भाई जी, चेयरपर्सन एजुकेशन विंग, आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर गणपति भास्कर, डॉक्टर मोहित गंभीर, प्रोफेसर हिमांशु पांडे, राजयोगिनी बीके शीलू दीदी जी, डॉक्टर बीके पांडेमणि, डॉक्टर बीके गुलियानी भाई, बीके किरण बहन, दानिया बहन मधुरवाणी ग्रुप, भारत और पड़ोस के नेपाल से आए हुए डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, डीन, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स। सबसे पहले मैं परम आदरणीय राजयोगी मृत्युंजय भाई का हृदय से स्वागत करता हूं। आप के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। आप न ही केवल हमारे एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन हैं, बल्कि ब्रह्मा कुमारीज के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। आप न केवल खुद उमंग उत्साह में रहते हैं, बल्कि दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाते रहते हैं। असंभव कार्य को संभव बनाना, चैलेंजेस को स्वीकार करना, उनका समाधान निकालना, ये आपके रग रग में है। वैल्यू एजुकेशन के जो हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। बहुत ही आप मेहनती हैं, अथक सेवाधारी हैं। आपके बारे में अगर मैं ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, आपकी मेहनत को देख खुद खुदा सलाम करे। स्वागत है। आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स प्रोफेसर हिमांशु पांडे, वाइस चांसलर गणपति यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, डॉक्टर गणपति भास्करन वीसी तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मोहित गंभीर डायरेक्टर MHRD AICT। आप भी बहुत ही निर्माणचित हैं। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आप इस एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके अंदर वो सब क्वालिटी हैं जो एक लर्निड व्यक्ति में होनी चाहिए। मैं देखता हूं कि आपके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ 3D, डेडिकेशन, डिवोशन एंड फर्म डिटर्मिनेशन, जो आपने ठान लिया वो आप करते हैं। हम तो आपके लिए उस परम पिता परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि हंसते रहें आप हजारों के बीच में, जैसे खिलता है फूल बहारों के बीच में, रोशन हो आप जग में इस तरह जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। आपका भी हृदय से स्वागत है। स्वागत की अगली कड़ी में राजयोगिनी बीके शीलू दीदी जी। कौन ऐसा भारत और भारत के बाहर भाई बहन है जो आपको नहीं जानता, रोज आपको टीवी पर देखते हैं, रोज रेडियो पर पीस ऑफ माइंड में आपके प्रवचन होते रहते हैं। लगभग सभी देशों में आपने इस शिक्षा को आगे फैलाया है, तो इसलिए आपके बारे में यही कहा जाता है कि चमन का हर फूल आपको गुलाब कहता है, चमन का हर फूल आपको गुलाब कहता है, हम ही नहीं पूरा यज्ञ आपको लाजवाब कहता है, पूरा यज्ञ आपको लाजवाब कहता है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे डॉक्टर बी के पांडेमणि भाई जो वैल्यू एजुकेशन कोर्सेज हैं उसके आप डायरेक्टर हैं, अथक और निरंतर काम करने वाले आप, सारा दिन रात काम करते रहते हैं। अभी आज सुबह बात हो रही थी, वहां से तमिलनाडु यूनिवर्सिटी से एक वाइस चांसलर आए हैं, भास्करन, डॉक्टर भास्करन, उनको लेने के लिए आप गए थे और रात को 12 बजे कहते हम पहुंचे हैं। तो इतने अथक सेवाधारी हैं हम, दिन देखे ना रात बहुत मेहनत करते हैं। और जो आप देख रहे हैं, हमारे 2009 में जो हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था पीजी डिप्लोमा में से, आज 15-16 कोर्सेज एक यूनिवर्सिटी से हमने स्टार्ट किया था, आज 15-16 यूनिवर्सिटीज में ऑटोनॉमस कॉलेज में हमारे वैल्यू एजुकेशन कोर्सेज चल रहे हैं, जिनका डिटेल अभी इसके बाद डॉक्टर पांडेमणि बताएंगे। आपका भी हम इस मन से स्वागत करते हैं, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रोफेसर बी के वेद गुलियानी जी, आपके बारे में भी हम यही कहेंगे कि जब आप हिसार से आप रहने वाले हैं, जब हिसार से माउंट आबू आते हैं तो पहले भाई साहब को पूछते हैं मेरा क्या काम है, कौन सी सेवा मुझे करनी है। बैग रखने से पहले ऑफिस में आते हैं और एक दिन पहले भी टेलीफोन करते हैं। इतने अथक सेवाधारी हैं आप। आपके बारे में अगर मैं कहूं, जीवन में आपकी सादगी है, कार्य के प्रति आपकी सिंसियरिटी है और जुबान में आपका मिठास है, हम आपका भी हृदय से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारी बीके किरण बहन जी जो कितना सुचारू रूप से स्टेज कंडक्ट कर रही है, आप ईगोलेस, ईगो क्या होती है पिछले 20 साल से आपके संपर्क में है, कभी महसूस ही नहीं किया, बहुत ही कोऑपरेटिव। एक शॉर्ट नोटिस भी आपको मिल जाए दो दिन पहले, अगर कोई विपरीत परिस्थितियां ना हो तो आप हमेशा तैयार हो जाती हैं और आप बहुत ही मिलनसार है। आज के इस प्रोग्राम में आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज जो छोटी सी बच्ची ने कितना सुंदर डांस किया, दानिया बहन, और हमारा मधुरवाणी ग्रुप जिसने आपका मोह मोह लिया, आपका भी हम स्वागत करते हैं, आपका भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और इन सब से बढ़कर जो देश के कोने कोने से डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर, डायरेक्टर, डीन्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स आए हैं, आपके बारे में एक ये जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी 33 साल कॉलेज में काम किया है, कि अगर एक इंजीनियर भ्रष्ट हो जाता है तो हो सकता है कि इनॉग्रेशन से पहले 2-4 पुल टूट जाएं, कोई बात नहीं। एक डॉक्टर भ्रष्ट हो जाता है तो लालच में वो गलत ऑपरेशन कर दे, कोई बात नहीं। जज अगर भ्रष्ट हो जाता है तो वो 10-20 लाख रुपए लेकर फैसला पलट दे। एक नेता भ्रष्ट हो जाता है, हो सकता है कि 1000-2000 करोड़ रुपए डकार जाए। लेकिन दोस्तों, यदि एक शिक्षक भ्रष्ट हो जाता है तो पूरी संस्कृति तहस नहस हो जाती है, पूरी सभ्यता तहस नहस हो जाती है। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप ही इस देश के निर्माता हैं। आपके ऊपर न केवल बच्चों की बल्कि देश की नजर टिके हुए है। यहां से जब आप जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, चाहे वो बच्चों से हो, टीचर से हो या मैनेजमेंट से हो, लेकिन कुछ भी चला जाए, दादी कहती थी कि आपकी मुस्कुराहट ना जाए। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुए, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। धन्यवाद। ओम शांति।
धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता जी। अब हमारे सामने एक ऐसी हस्ती आ रही है जिनकी लिस्ट ऑफ डिग्रीज मुझे पढ़ने में लगभग 1.5 मिनट लग गया है। मैं बता दूं, ये हैं हमारे ब्रदर डॉक्टर पांड्यामणि जी। He will tell us about value education programs in different universities. He is director of distance education programs, Brahma Kumaris, Rajyoga Education and Research Foundation. बाकी 18, 19, 20 डिग्रियां जिन्होंने ली होंगी, उनकी विद्वत्ता और उनके कार्यों का बखान यहाँ करना संभव नहीं है। आप खुद ही उनकी वाणी को सुने और महसूस करें।
मंचासीन महानुभव, प्रिय भाई और बहनों, आप सबको ये बात बता के मैं बहुत हर्ष हो रहा है। पिछले 10 साल से वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी का कार्यक्रम हमने शुरू किया है। ये पहला कदम हमने उठाया है अन्नामलई यूनिवर्सिटी के साथ, एक एमओयू हुआ है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी का शुरू किया था। लेकिन अभी लगभग 15 डिग्री हम उसके द्वारा करा रहे हैं। और एक खुशी की बात है, एक यूनिवर्सिटी से जो हमने शुरू किया है, अभी 13 यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एमओयू है। कई प्रकार के कार्यक्रम हम चला रहे हैं, उसमें हम अभी डिटेल्स में ये देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं, इस साल हम सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 6 सब्जेक्ट में, इसके बारे में इसमें डिटेल है। एक वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी का है, दूसरा योगा एंड वैल्यू एजुकेशन है, तीसरा सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट है, और सर्टिफिकेट कोर्सेस है। ये वैल्यू एजुकेशन कोर्सेस है कई प्रकार की, इसके बारे में इसमें डिटेल है। और जो हमारा परफॉर्मेंस है 2009-10 में एक एमओयू हुआ है, तो अभी लगभग 18 ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनिवर्सिटीज में है और 6 ऑर्गेनाइजेशन में हमारा एमओयू हुआ है, अभी इसकी सेवाएं चल रही है। तो सर्टिफिकेट कोर्सेस में सबसे पहले है लिविंग वैल्यूज, जीवन भूमि में प्रमाण पत्र कार्यक्रम है, दूसरा राजयोग एजुकेशन कोर्स है, और तीसरा है लाइफस्टाइल फॉर होलिस्टिक हेल्थ, फोर्थ है स्पिरिचुअल काउंसिलिंग, क्योंकि आजकल आप सब जानते ही हैं डिप्रेशन और जो एंगर है वो बढ़ता रह रहा है, उसके लिए काउंसिलिंग की बहुत जरूरी है, और एक स्ट्रेस एंड एंगर फ्री लिविंग भी है, और सबसे लास्ट एक होलिस्टिक एजिंग है। तो एजड पीपल के लिए भी आज तक किसी ने भी एक कोर्स नहीं बनाया, ब्रह्मा कुमारी इसने अन्नामलई यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के एक कोर्स शुरू किया है, उसमें जो एजड पीपल के लिए फायदे हैं। इसमें 2 लैंग्वेजेस में है, हिंदी और इंग्लिश में, उसके अलावा गुजराती, मराठी, ओरिया, साउथ इंडियन लैंग्वेज में तमिल, तेलुगु, कन्नडा, मलयालम, ये सब भाषाओं में इट इज अवेलेबल है। तो ड्यूरेशन 6 मंथ्स का है, लेकिन आपको एडमिशन नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। एप्लीकेशन यू कैन डाउनलोड थ्रू दी ऑनलाइन एंड कोर्स फी ऑल्सो यू कैन। इसमें है वैल्यू एजुकेशन सर्विसेस एट ए ग्लांस है, उसमें एक सब्जेक्ट है वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, इसमें डिप्लोमा है, बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ साइंस में लैटरल एंट्री है, जिन्होंने डिप्लोमा किया उनके लिए दो साल का है, पीजी डिप्लोमा है, एमएससी है, एमएससी लैटरल एंट्री है, दिस आर द प्रोग्राम्स अवेलेबल अंडर वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। दूसरा है काउंसिलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, इसमें डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है, एमएससी है, एमएससी लैटरल एंट्री है, जिन्होंने पीजी डिप्लोमा किया उनके लिए एक साल का लैटरल एंट्री है। और तीसरा है स्पिरिचुअल काउंसिलर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जिन्होंने हमारा पीजी डिप्लोमा और एमएससी किया है उनके लिए स्पेशल कार्यक्रम, 3 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, उनका सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है। तो पिछले साल हमने ये शुरू किया योगा एंड वैल्यू एजुकेशन, इसमें पीजी डिप्लोमा एमएससी एंड एमएससी लैटरल एंट्री है। तो एक कार्यक्रम है पीजी डिप्लोमा इन वैल्यूज इन हेल्थ केयर, एक जानकी फाउंडेशन के साथ हमारा एमओयू हुआ है, ये नर्सिंग और जो मेडिकल प्रोफेशन में है उनके लिए खास ये कोर्स बनाया गया है। तो और कॉरपोरेट सेक्टर से जब हमको निमंत्रण मिला तो हमने एक एमबीए शुरू किया डुअल स्पेशलाइजेशन में, सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट में। तो इस साल जो नया साल 1920 से हम शुरू कर रहे हैं ये 6 सर्टिफिकेट कोर्सेस है, इसके बारे में पहले ही आपको बताया है। जो अचीवमेंट्स टिल डेट 1780 तक लगभग 18,000 स्टूडेंट्स ने ये कोर्स पढ़ लिया है, तो सारे इंडिया में। और दूसरा हमारा मेन प्रोग्राम है यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक में है, उनके बाद वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन में बैचलर ऑफ आर्ट्स है, डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा है एंड बीए है। तो इस साल मास्टर ऑफ आर्ट्स भी वहां शुरू कर रहे हैं। और वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी सर्टिफिकेट कोर्स एंड वन पेपर इन बैचलर ऑफ आर्ट्स में है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से है। इसके बाद तमिल यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में, ओनली फॉर द प्रमोशन ऑफ द तमिल लैंग्वेज, उनके साथ हमारा एमओए है सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स के लिए। और एक ऑटोनोमस कॉलेज है एसआरएनएम कॉलेज, वहां भी वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी का कोर्स चल रहा है। हमारा फ्यूचर प्लान है जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी एक वैल्यू एजुकेशन की अभी जरूरत है, उसके लिए अभी तक फर्स्ट एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड तक किताब तैयार है, तो अगले साल हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। डिमांड्स बहुत बढ़ रहा है, एवरीबडी वांट्स वैल्यू एजुकेशन। जैसे कि हम पहले बार हम अन्नामलई यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू कर रहे थे, उस समय का जो वाइस चांसलर डॉक्टर रामानंदन था, उन्होंने कहा है यू कीप ओनली वैल्यू एजुकेशन नॉट टू इंक्लूड द वैल्यू स्पिरिचुअलिटी देन मोर पीपल इज ज्वाइन, ही हैज गिवन द सजेशन। उस समय हमारा आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब ने कहा है तो वैल्यू एजुकेशन तो हमको मालूम है, लेकिन उसको लाने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए टू एक्सप्लोर और टू एक्सपीरियंस द वैल्यूज, तो हमको स्पिरिचुअल पावर्स की बहुत जरूरी है, इसलिए हमको टॉपिक में ही स्पिरिचुअलिटी चाहिए, उन्होंने कहा है। तो एकेडमिक काउंसिल ने उसको मान लिया है, तो इसलिए एक प्रोग्राम वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के साथ चल रहा है। ये है हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच।
Thank you, Brother Pandyamani ji. Now we have with us our guest of honor, Dr. Mohit Gambhir. He is Director, MHRD Innovation Cell, AICTE Delhi. He is working as the Innovation Director, MHRD Innovation Cell, Government of India. MIC is committed to systematically foster innovation culture in all higher education institutions. The primary mandate of Innovation Cell is to encourage, inspire and nurture young students by exposing them to new ideas and processes resulting in innovative activities in their formative years. Dr. Gambhir has also taken charge of Government of India flagship program Smart India Hackathon 2019 as a joint member secretary of Executive Committee. Now, at present, Dr. Gambhir is engaged in creating valuable business assets for its clients by safeguarding their IP rights. It provides customized and high-quality services to high-tech and low-tech industries. We invite here Dr. Mohit Gambhir.
Sahriday dhanyavad. मेरा इतना डिटेल इंट्रोडक्शन देने के लिए इससे पहले कि मैं स्वागत करूं या शुक्रिया अदा करूं मैं मृत्युंजय भाई को भी यही कह रहा था कि मैं तो बहुत ब्रीफ लिख के लाया था मुझे लगता है कि बहन ने इंटरनेट से मेरा प्रोफाइल ही निकाल लिया है तो आई वॉज राइटिंग डाउन फ्यू लाइन्स तो मृत्युंजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद बाकी जितने जो सदगण ऊपर बैठे हैं डायस पे और भारत के भविष्य के निर्माणकर्ता जितने भी सद्गुरुजन सामने बैठे हैं आज यहां आए या इस 5 दिन के प्रोग्राम में मैं सबका हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं नाउ टू बिगिन विथ व्हाट वी से एंड आई बिलीव सिंस यस्टरडे एवरी वन ऑफ अस इज चैंटिंग ओम शांति आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ अस नो द ट्रू मीनिंग ऑफ Om Shanti, why we are chanting this. So this is what I do actually. Like Mahant said, I started my career as an academician way back 20 years ago. And until and unless my curious quotient is met, I don't think I deserve to be a teacher. So what I said, my curious quotient has to be met, then only I can satisfy the answers or the questions of the students which they are asking. So, as an Om, I believe the utpatti of this universe, which says, and Shanti, we believe the peace. Everybody, we say the peace of universe, so we say Om Shanti. Now, coming to the conclusion, like what we are doing here, the spiritualism and the values in our education. So, I begin with, by highlighting the 5 key aspects, what I say, as the spiritual values or the spirituality. So first we say it is the altruistic values, then we have humanistic, then we have personal, then we have divine, and then we have the associated values attached to it. And together they make the spirituality which is must in the education scenario. Now I begin with, it's say altruistic values, what does they mean? To be precise, what we say that as an individual, the personality we are, the selfless service for others. That is the very first thing. And now how it comes in? It says the truthfulness, the kindness, the repentance, the reliance of God, our modesty, our unity, our love, affection. These are the things which very first inception it says has to be the beginning. And then we say the humanistic values, precisely every one of us are aware of, we have been taught, nonetheless we forget every time we move on. Then our personal values. Then fourth, which I again want to highlight, it says divine values, and which means to love God. And the values which says submission to God, such as piety and the compassion we have. Finally, the affective values, the affection, how we see the others, how we see our fellow beings, and these all. Now coming to a thing, what I am going to present ahead, very practically I am telling you, these are all my life lessons. In a very short span of life which I have learned. Just to highlight, I started working when I was just 13 years of age. Many of you, the senior ones, they started during their era, but in my, because of something, and there are excuses, not excuses in everybody's life. So I started working at the age of 13. Until then, whenever I say, even in my family, my uncles, they come, they approach me to ask a couple of things, that how should we do it. So I feel myself blessed, and this is a life lesson which we get, which we achieve. And again I am saying, mind you, what I am going to present, maybe not find in books, it's just self-learned, I may be wrong, may be right, but these are something, my own findings, my own life experiences. So very first lesson which I learned, there are 2 kind of person in this world. One is good, another one is very good. इसके अलावा कुछ नहीं. Very good are those जिनसे मेरी इस समय wavelength बहुत अच्छी मिल रही है, जिनसे मेरी सोच मिल रही है, जो मेरे साथ इस समय चल रहे हैं. और good, अच्छे, वो लोग जो इस समय मेरे साथ नहीं है, हाँ मुझे slowly gradually उनको अपना बनाना है, अपने साथ चलाना है. तो it's all like, why I came to this thing? Because अगर मैं नेगेटिविटी को बढ़ावा देता हूं, मैं नेगेटिव सोचता हूं, व्हाट इट डज, माय एक्शंस दे बिकम नेगेटिव. And if my actions are negative, I am not able to put impact on the lives, which is my destined karma, which I am supposed to do. So it says the very first lesson, it starts that there are two kind of persons, like what I said, very good and good. Then when I learned this, it came, okay, now what? I found it that people are good and very good. What about myself? I again wrote a line in my diary. It says, Man Sachcha to Jag Sachcha. Again, a hard part. You know, many a time, and again in the brief period, like very first stint what I did, I left my first government job in year 2006, went to private sector for a couple years, then started my own companies, did again 2, 3, 4 of them, 2018, again came back to government and to do this stint. So now what happened during all this course of my life? I realized, and even my team, the people, whosoever I interacted with, maybe in US, Europe, India, everyone, they always say, Mohit, it feels like you are so calm, you are, you know, contented, you are in solace, so it's like aap sadhuvad mein hai. So I say, no, I am not in sadhuvad. I know what I am supposed to do, what is my purpose of life. And if I understand what is my purpose of life, then I think there is nothing which I should be worried of. Because it's destined, it's moving on. What I learned again, live your life like there is no second in your life. अपनी जिंदगी ऐसे जिए कि हमारी जिंदगी में कोई दूसरा पल नहीं हो. मुझे थोड़ी पता है अगले पल क्या होने वाला है. तो व्हाट आई अगेन डू एवरी नाइट व्हेन आई गो टू स्लीप, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं कि आज मुझे इतना कैपेबल रखा कि जो आपकी असाइंड टास्क शीट थी होपफुली मैं पूरी कर पाया. और कल सुबह मुझे फिर से स्वास्थ्य उठाइएगा, जिंदा उठाइएगा, ताकि मैं आपकी कल की टास्क शीट करने के लिए फिर से कैपेबिलिटी लेकर आ पाऊं. सो अगेन आई एम सेइंग दीज आर ऑल माय एक्सपीरियंसेस बिकॉज आई वेरी ट्रूली अंडरस्टैंड दैट इन लाइफ व्हाट वी आर नोड्स. एंड आई अगेन नीड नॉट टू टेल लाइक ऑल आर एजुकेशनिस्ट, सब एक ऐसी बैकग्राउंड से आए हैं जिन्होंने पढ़ा है, लिखा है, लाइक अध्यापक गण है. एंड अगेन अध्यापक का भी फिर से डायसेक्शन ऐसे होता है कि जो कंसंट्रेशन को, फोकस को बढ़ाने में मददगार होता है. और दूसरे एंड पे हम विद्यार्थी भी बनते हैं जो विद्या को अर्जित करने की अपेक्षा रखता हो, राइट? ऑलवेज वी डू. सो इसका कहने का मेरा तात्पर्य सब ये नहीं था कि डेली टास्क शीट है और ये कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागें. नहीं, वो हमारी एक जिम्मेवारियां हैं. दीज आर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एंड वट it moved on, it moves on. A typical, I think some mathematicians must be sitting on, ek algorithm hoti hai maths mein, Disgustra's algorithm bolte hain, usko shortest path algorithm hoti hai. To main usko bahut acche se relate karta hoon apne life ke usoolon se. And what I say, you know, what we are doing, hamare karam jo hain, wo hamara vajan hai, wo hamara weight hai, wo jo hame upar, jo task hai, sorry, wo hamara ek weight hai. तो वो एल्गोरिथम कैसे बनाई गई, और ये एक मैथमेटिशियन जो हमें बुक्स में पढ़ाया जाता है कि बहुत नई बनाई गई, बट गीता या उसके सार में आप जाएंगे तो बहुत सदियों पहले लिख दिया गया था. आप अपना कर्म करिए, आपके जो वजन है आपके शरीर पे काम का, कार्यों का, उनको थोड़ा सा कम करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने जो 5 रास्ते हैं, अगर आपने कर्म कर लिया, अच्छे से कर्म किया, आपके बैग का वजन कम है, तो आप एक बहुत अच्छा बेटर वाला रास्ता ले पाएंगे. बट ऑब्वियस है, उस पर आगे बढ़ पाएंगे. वो एल्गोरिथम भी कुछ ऐसा ही कहती है कि एक नोड जो है, अगर उस नोड का वेट कम होगा, वर्टिस के साथ अटैच होगी, वर्टिस का वजन कम होगा, इन टुगेदर आप एक अगली नोड पे पहुंच जाएंगे जो कि फिर से एक कम वजन वाली होगी. तो यानी कि हम क्या करते जा रहे हैं, अपने कर्म एक ऐसे करते चले जाएं कि अपना वजन कम रखें. एट द एंड द फाइनल डे वी शुड बी सो रिलैक्स एंड सो रिलीव दैट वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग व्हाट वॉज डिस्टाइंड फॉर. मेरी टास्क शीट कंप्लीट है, मेरे पास कुछ ऐसा पेंडिंग नहीं है कि जिसका मुझे मलाल हो. कई लोग बोलते हैं और अपने अपनी चीज होती है. तो कल मैं बात कर रहा था डाइनिंग हॉल में किसी से, और कुछ दिन आते हैं तो आई वॉज विशिंग माई फ्रेंड, उसका कल जन्मदिन था, तो आई वॉज आस्किंग हिम, एंड आई एम फेमस इन माई सर्कल. मैं हर जन्मदिन पे अपने काम करने के आर्स जो होते हैं कुछ मिनट बढ़ा देता हूं. तो मुझसे पूछा गया, मुझसे वो पूछते हैं मेरे सर्कल में कि मोहित आप ऐसा क्यों करते हो. मैं कहता हूं मुझे यह समझ में आता है कि जो पीछे चला गया वो तो मैंने बहुत अच्छा समय बिताया, बट मुझे अभी पता नहीं है, तो मैं और कोशिश करता हूं जितना ज्यादा से ज्यादा मैं ग्रैब कर पाऊं, जितना ज्यादा से ज्यादा मैं खत्म कर पाऊं। इससे आगे मुझे नहीं पता कि कितनी चीजें और कितने काम होने वाले हैं। एंड देन यू नो अल्टीमेटली टू एवरीवन व्हाट आई वांट टू से कि लीड बाय एन एग्जांपल। बहुत हम पढ़ते हैं, बहुत जगह लिखा जाता है, बहुत जगह कहा जाता है। हमारी जो संपदा है वो बहुत रिच है, बट वी डोंट रियलाइज। आज के जमाने में आप देखेंगे हमारे, हम अपने बच्चों के लिए खुद भी क्या करते हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं करते हैं, एक भेड़ चाल है मार्केट में, व्हाट वी हैव इज K-12 बोर्ड आ गया, IB बोर्ड आ गया, दिस इज कैम्ब्रिज एजुकेशन। नो डाउट मेरे बच्चे भी पढ़ते होंगे। एंड द सिचुएशन कमिंग टू, अगर आप एनालिसिस करेंगे उस चीज का, रीपैकेजिंग है। रीपैकेजिंग किस चीज की? बहुत सालों पहले जो गुरुकुल पद्धति से हमें कुछ पढ़ाया जाता था उसको दोबारा से वेस्टर्न वर्ल्ड से फिर से लाके क्रूनी कैपिटलिज्म के मोड से हम लोगों के दिमाग में बिठाया जाता है। अरे दिन भर बच्चों को खेलने दीजिए, दिन भर हमारे स्कूल में बच्चा डे बोर्डिंग में रहता है, हम यहां पे उसको खाना भी देते हैं, हम यहां पे उसको होलिस्टिक लर्निंग प्रोवाइड कराते हैं और हम ये करते हैं। दूसरे एंड पे अगर मुझसे बोलते हैं, हम सबसे बोलते हैं कि बच्चों को गुरुकुल भेजिए, हम कहते हैं वो भी कोई भेजने की जगह है। जहां पे हमें शिक्षा मुफ्त मिल सकती है, जहां पे हमें शिक्षा बहुत अच्छी पद्धति से मिल सकती है, हम वहां नहीं भेजते। हम क्या करते हैं? IB, K-12, CI, क्यों? हमें एक डर है कि हमारे जो बच्चे हैं कहीं वो गधों की दौड़ में पीछे ना छूट जाएं। यही करते हैं ना। मेरी बड़ी बेटी 10th क्लास में है एंड वो मेरे से बहुत आर्ग्यूमेंट्स करती है कि शी इज अ ट्रेंड सिंगर, तो कि पापा मुझे कॉलेज क्यों जाना है? कैन यू जस्ट बिलीव अ स्टूडेंट ऑफ 13-14 ईयर्स, मुझे कॉलेज क्यों जाना है? आप मेरे 4 साल इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से खराब करवा देंगे, क्योंकि मेरे स्कूल की टीचर जो है वो मुझसे गाना सीखती है, तो अब अगर मैं 4 साल दोबारा से कॉलेज जाऊंगी तो मैं तो उनसे बहुत पीछे हो जाऊंगी। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। I am sitting in a system, I am driving many programs, but as a father, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि वो बच्चा अपनी जगह सही कह रहा है, वो education उसकी ले चुका है, वो उसको सीख चुका है, फिर भी मैं एक ऐसे piece of paper के लिए उसको भेड़ चाल में डालना चाहता हूं कि वो 20-22 साल तक जब पहुंचे, पता नहीं उसके दिमाग से वो क्या करे, और जो क्रिएटिविटी, जो न्यूरॉन्स उसके आज की तारीख में इतनी उपजता वाले है, मैं उनको खत्म कर दूं, मैं उनको कर्व कर दूं। हम देखते हैं ना, बहुत पहले भी पढ़ते हैं, हमारे साहित्य में मिलता है कि हमारे इतने लर्नेड लोग हैं कि इन 14 इयर्स उन्होंने इतने वेद लिख दिए, 18 साल की उम्र में उन्होंने देश भ्रमण कर लिया, 20 साल की उम्र में उन्होंने ये फतह कर ली। क्या आज ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, लेकिन हम उसको करने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि कसूरवार कौन है? हम पेरेंट्स, हम एजुकेटर्स, हम एकेडमिशियन, जो नई पौध को पनपने से पहले वही बिना खाद पानी डाले, अच्छे से सींचने की जगह उसको मरणासन कर देते हैं अपनी फर्टिलाइजर वाली खाद डाल के। अगर पेरेंट्स को बना, हमारे यहां अभी भी ये होता है, एंड आई जनरली टेल एवरीवन, पड़ोसी का बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बना, 8 लाख का पैकेज मिला, मेरा बच्चा क्यों नहीं बनेगा? मेरा बच्चा भी वही बनेगा। अरे मैं बच्चे से तो पूछ लूं क्या बनना चाहता है। नहीं, तो द टाइम हैज कम एंड कटिंग थिंग शॉर्ट, व्हाट प्राइमरली वी आर ट्राइंग टू डू एंड लर्न, वैल्यूज इनकलकेट हमें अपने में करनी है। कोई बहुत नई चीज नहीं है, मैं, मेरा, अपने को सुधारना, ये चीजें मेरे ख्याल से हमारे में, हम सब में बचपन से आनी चाहिए। अभी बहुत पहले, एंड आई एम शेयरिंग समथिंग, मीटिंग में भी वैसे ही कि हम हायर एजुकेशन पे बहुत फोकस करते हैं, यहां भी बहुत प्रोग्राम है, एंड आई मस्ट शेयर, मुझे बहुत खुशी भी हुई कल मैं जब सुन रहा था, जब हायर एजुकेशन मैं उस डिपार्टमेंट में होते हुए मुझे लगता है कि वो सब तो हो ही रहा है, पर जब स्कूल के बच्चों के बारे में मैंने प्रोग्राम देखे, रियली मैं बहुत, मुझे प्रसन्नता हुई कि हाँ, हम कैच देम यंग वाकई कर रहे हैं, और वो बहुत ऐसी है जिनको सींचना, जिनको संवारना, जिनको समझाना बहुत आसान है। हमारे एरिया में जहां हम रहते हैं, मुझे एक, अभी एक छोटी सी बच्ची इतना बढ़िया डांस कर रही थी, और मैं बिल्कुल एश्योरेंस के साथ कह सकता हूं, अगर द वे वी आर मूविंग, 15 साल बाद इस बच्ची से पूछिएगा क्या स्टेज पे चढ़ना है, वो बच्ची मना कर देगी। अगर हम जिस सिनेरियो में हम बच्चों की अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन उसको ऐसे ही पनपने देंगे, वो कहीं का कहीं पहुंच के बहुत अच्छे परचम पे पहुंचेगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा था छोटा सा अगेन कि हमारे गली में एक ऐसी 7 साल की बच्ची, हमारे पड़ोस में लोग, हम लोग करते हैं कोई फंक्शन है कुछ है, सड़क पे ही टेंट तंबू सब लगा दिया और कर दिया, हम बैठे थे, मैं अपने आरडब्ल्यू का मेंबर हूं, वो बच्ची ने पहले मुझे बुलाया, मुझे बोल दिया अंकल आपके साथ एक काम है आप चलिए, वो मुझे लेके गई, मुझे नहीं पता था क्या काम है, उनकी बेल बजा के बोलती है अंकल आपके घर में यार्ड नहीं है, तो उन्होंने बोला बेटा है, तो ये टेंट आपने बाहर क्यों लगाया है। तो एक अब बच्चे की सोच है, आज मैं अगर उसे डांट दूं कि बेटा नहीं है ठीक, तो उसके बाद बोलती है अंकल रोड पे आपको पता है कितनी प्रॉब्लम है, आप इसको अंदर कर लेंगे, अभी आप करेंगे फिर कचरा होगा, फिर प्लास्टिक फैलेगा, फिर प्लास्टिक फैलेगा तो पता है आप तो चले जाएंगे, हम बच्चों के लिए भविष्य कितना खराब हो जाएगा। वो मासूम है, पर क्यों? क्योंकि उसके स्कूल में यह सिखाया जा रहा है वो सही है, हमारे पास इन चीजों के जवाब नहीं है। अभी मैं एक अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन बताता हूं, हम यहीं थे, हम सब ने ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया, राइट, छोटे छोटे एग्जांपल है, हम लोग हाथ धो रहे थे, कितने लोग ऐसे थे, आई कैन टेल यू, मेरे पास नंबर भी है, सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने एक हाथ से टैप पकड़ा था, दूसरे हाथ से चला रहे थे, बाकी सब टैप खोल के खड़े थे, हाथ धो रहे थे, पानी चल रहा था। आप सबको शायद ज्ञात होगा ये एक पहाड़ी पे बना है, और अगर किसी ने आने के बाद ऑब्जर्व किया होगा तो वाटर टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, क्या हम अपने जीवन में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह से शाम तक हम बहुत सारी नई चीजें देखते हैं, अपने आप को सुधार लीजिए, अपना जीवन सुधारिए, मन सच्चा जग सच्चा करिए, बच्चों के साथ और आगे के भविष्य का निर्माण करिए। ओम शांति शांति शांति। ठीक है,
धन्यवाद भ्राता मोहित गंभीर जी, आपने सच में छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ बहुत गंभीर बातों को सबके सामने रख दिया है अपने नाम के अनुरूप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। विद अस वी हैव वाइस चांसलर ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद प्रोफेसर हिमांशु पांड्या। Dr. Himanshu Pandey is appointed as 17th Vice Chancellor of Gujarat University. As a scientist, he is working on development methods for utilization of novel techniques in plant sciences, bioinformatics, forensic biology, and climate change impacts management. During his long career as an academician, Professor Pandya has coordinated more than 310 academic programs and more than 180 publications of national and international repute. He has also received President's Award for National Services Scheme by Honorable President of India, Shri Ramnath Kovindji, on behalf of Gujarat University at Rashtrapati Bhavan. He is such a wise man to take this chance to come here and address all of us. We invite Professor Dr. Himanshu Pandya.
Om Shanti. The way Kiran Bahan speaks, it gives peace to the mind. Being an educator, when you listen to someone who is at peace, you hardly find this word peace. People say, education brings wisdom, and wisdom brings peace and understanding. We have many degrees in our portfolio. We have many papers, projects, so much of coordination and collaborations. But when you say, are you at peace? Then we are failed to answer. Why is it so? In the morning we heard Professor Girish, he was talking about decluttering of minds. Is it really possible to declutter? Every moment you are taken to a situation where you have to decide things either in yes or no. And people want answers immediately. Right now, you answer my question. If you are not answering, then either you are dumb, you don't know the system, or you are rude. So we immediately develop perception about the issues, about the person, about the happening. But what we forget is, like Dr. Pandian was mentioning, that are we considering others as a human being? We are losing this capacity every day. Because we are into so much of mechanization of life. Every day we wake up and we end our day with so much of sorrow and so much of unhappiness. Why it is happening? Because the way we are thinking, the way we are living, the way we are worshipping, it is a big question. If today's generation asks me that how Hanuman can fly with a mountain, I don't have answer. I'll try to make my kid understand with some examples and some stories and theories. But then your kid understands. कि पापा मेरे से झूठ बोल रहे, मुझे मनाने की कोशिश कर रहे, बाकी उनको भी नहीं पता है कि हनुमान जी पूरा पर्वत लेके कैसे उड़े थे, 16,108 रानी के साथ आप कृष्ण भगवान को भगवान कैसे कह सकते हो? कैन यू जस्टिफाई? देर आर रीजन्स. आई एम नॉट चैलेंजिंग, आई एम नॉट डाउटिंग एनी टेक्स्ट और स्क्रिप्ट हियर. आई एम नॉट सपोज टू, बिकॉज आई एम नॉट ऑथोराइज टू डू सो. But then, not only logic, but you need to make them understand why these things are important in your life. You know, kinds of seminars are happening all around the globe. We are participating, the highest level of system, they are participating. And once they are finished, there is no document to follow. There are no practices to understand. So I would request the other August gathering here to develop some document and present it before the authority, that how this value-based education is important in life. We cannot invite each and every one to kind of conferences. But there are a group of people who can develop a network amongst the academia, and they can work for this cause. I tell you, the way we worship, the way we, you know, live our life, it is merely a copy of somebody else. Somebody wants to become APJ Abdul Kalam, somebody wants to become so and so, so and so. शास्त्रों में ऐसा लिखा गया कि हाथी को ऐरावत बनना है, वृक्ष को कल्पवृक्ष बनना है, सांप को वासुकी बनना है, गाय को कामधेनु बनना है. वन इंस्टीट्यूशन इज इन रेस विथ अनदर वन. आई वॉन्ट टू बी नंबर वन. एंड इन दिस पर्टिकुलर रेस यू लूज योर ओरिजिनैलिटी. एंड योर ओरिजिनैलिटी इज नथिंग बट यू एंड योर सेल्फ. Each and every institution, each and every individual is there with a message. And a beautiful message from God is, learn who are you. If you can understand during the daytime, at least once in a day, we can change lot many things. What we are and why we are. So, when you try to understand the origin of life and then try to define your presence on this globe, there are so many theories and understandings. Meditation brings this capacity. I have never practiced meditation, Didi. Never. ये तो भगवान का धाम है, यहाँ सच बोल सकते हैं. But I get lost during the daytime. And that moment can be anything. मैं ऑफिस में बैठे बैठे कुछ डिसीजन ले रहा हूं, उस टाइम आई गेट लॉस्ट. व्हेन आई एम इन अ मीटिंग आई गेट लॉस्ट फॉर अ व्हाइल. एंड समटाइम्स यू नो इट हैपेंस व्हेन आई ड्राइव. इट इज डेंजरस बट इट हैपेंस. व्हेन यू आर ऑन अ लॉन्ग ड्राइव ऑफ 8-9 आवर्स यू गेट लॉस्ट फॉर अ व्हाइल एंड यू ड्राइव मैकेनिकली. आई थिंक यू पीपल हैव रियलाइज्ड द लाइफ and you people have linked yourself to the supreme god or the almighty. This getting lost is nothing but a status, a moment where you link yourself to the supreme power. If you can identify this particular phenomena and if you can prolong with this practice, that is meditation. Otherwise sometimes you know you be there in the meditation hall and be there for 3-4 hours and you get slip. That is not meditation. That spur of a moment, what keeps you alive, which allows you to think something differently, that is linking to the supreme power, linking to yourself, linking to the ideology, what you want to believe and live. We have to answer so many questions being an educator. What are the ways? They cannot be lectures for preaching, I tell you. It should be by the way. Practicing with the flow. If you try to preach your students or your siblings or your kids, they will listen to you because they are supposed to listen to you. But they will not practice. But if you allow them to learn things by the way, by working something and you are teaching them something, that impacts in a big way to the mind. And I think when we appreciate foreign systems, that this particular university is the best example of teaching and learning, I tell you, they are doing the same thing. In the opening remarks, Didi mentioned ki hamari gurukul paramparaye jo chali gayi hai, उससे जो ज्ञान संपादन की संभावनाएं थी वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है. तो उसके लिए हमको कोई रिसोर्ट या ऐसे कोई फार्म हाउस या ऐसे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है. हमारे संस्थान जो है वो हमारे गुरुकुल है, हमारे क्लासरूम है, वो हमारे कक्ष है. उसमें जाके आप वही चीजें कीजिए. एक वाइस चांसलर की हैसियत से ये तो बोल सकता हूं कि देर आर नो रूल्स हाउ टू टीच इन द क्लासरूम. है कहीं? देर आर नो रूल्स. आपको सिलेबस खत्म करना है, बस उस सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़ानी है वो भी डिसाइडेड नहीं है. किस लेवल पे डेप्थ में जाके पढ़ानी है वो भी डिफाइंड नहीं है. सो इफ यू कैन लिंक दिस वैल्यूज विथ योर एकेडमिक्स, that will bring wisdom in the students. Sirf yuva desh hone se kuch nahi hone wala hai. More than 65% of population is young in this country and we are leading the world in nearer future. Aaj ki generation jo hai na WhatsApp padhti hai, sorry, na newspaper padhti hai, na TV dekhti hai. Wo WhatsApp, Snapchat, Instagram pe hai. Unko aapko kuch samjhana hai. लाइब्रेरीज भरी पड़ी है पूरी सारे इंस्टीट्यूशन में. बीइंग द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात, द हाईएस्ट अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन इन गुजरात, वी हैव मोर देन 3.5 लाख बुक्स अवेलेबल इन अवर लाइब्रेरी. मुझे नहीं लगता कि एक भी बच्चा वहां जाके पढ़ रहा हो. इफ यू टेक द एवरेज, क्योंकि उसको यूनिट्स खत्म करने हैं, टेस्ट देने हैं, एपीआई बनाना है टीचर को, सब अपने अपने में लगे हैं. एजुकेशन में कोई नहीं है. और हम वैल्यू एजुकेशन की बात करेंगे तो उसमें तो बहुत कम लोग मिलेंगे. मैं बहुत ऑनेस्टी से एक्सेप्ट करता हूं. जहां तक प्रैक्टिस का सवाल है, ये कंसिस्टेंसी से आना चाहिए, ये सातत्य मेंटेन होना चाहिए. और ये सातत्य तब मेंटेन होगा जब हम खुद समझेंगे कि हमको क्या करना है. मुझे लगता है कि ऐसे परिसंवादों से कुछ ऐसा निकल के आए, कुछ ऐसा नवनीत जिसको एक छोटी सी बुकलेट में हम अगर पब्लिश कर सके और वही चीज हम सारे एजुकेटर्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें और इसको एक पॉलिसी के रूप में, गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं लाएगी, हम ही को लाना है, हम ही को करना है, क्योंकि जिसकी हम बात करते हैं एक बहुत बड़ा भारत, भारत के बाहर भी रहता है। और जहां तक हमने देखा है डॉक्टर गंभीर और हम लोग तो बहुत बाहर आते जाते रहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का जितना आदर सम्मान और प्रैक्टिस बाहर होती है उतनी हमारे यहां कम होती है। दे आर डिटैच फ्रॉम योर कंट्री, इवन दे आर मेंटेनिंग दी ट्रेडिशंस। वी नीड टू थिंक इन डिटेल व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग, व्हाट वी आर वर्किंग, व्हाट वी आर लिविंग, अदरवाइज वी आर रियली लेट। आई टेल यू, we are really late. The incidence is happening around us. The way these institutions are working, आप देखिए ना, पूरी समाज व्यवस्था के अंदर देखिए, ये सारी जिम्मेदारी अब एजुकेशन पे आ गई है। मैं आपको बताऊं, आप यू आर द कल्प्रिट टीचर्स। अब एक छोटा सा बच्चा किसी को पूछ लीजिए तो बोलेगा शिक्षण, मैं हूं गुजराती छू એટલે કહું કે શિક્ષણની હાલત બહુ કથળી ગઈ છે, એવું કહે છે। નાનામાં નાનું છોકરો એને બી કહે શિક્ષણની હાલત કથળી ગઈ છે। સો ઇટ્સ ઇઝી ટુ બ્લેમ એજ્યુકેશન, ઇટ્સ વેરી ઇઝી ટુ બ્લેમ એજ્યુકેશન એન્ડ એવરીબડી ઇઝ બ્લેમિંગ એજ્યુકેશન। મેરે હિસાબ સે શિક્ષા ઓર કેલવણી દોનો મેં બહુ ફર્ક હૈ। હમારી કુટુંબ વ્યવસ્થા ખતમ હો ગઈ, હમારી ધર્મ વ્યવસ્થા ખતમ હો ગઈ, हमारी समाज व्यवस्था खत्म हो गई, तो अभी ये सारी जिम्मेदारी जो है वो एजुकेशन पे आ गई। अगर बच्चा शरारत करता है तो बोले स्कूल में कुछ पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, कॉलेज में कुछ सिखाते कि नहीं सिखाते। इफ दे आर मिसबिहेविंग विद द पेरेंट्स, इवन टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल। इफ दे आर नॉट फंक्शनिंग फॉर द सोसाइटी, इवन टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल। इफ दे आर नॉट अर्निंग, दे आर नॉट एम्प्लॉयड, अगेन एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल। मैं प्रोफेसर हूं और 45 मिनट तक तो बोलूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई नो माय लिमिटेशंस, बट शिक्षा को ये सारी चीजों से अलग करना चाहिए, तब जाके शिक्षा कुछ परफॉर्म कर पाएगी। एम्प्लॉयमेंट इज नेवर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, नेवर 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 नेवर। आज से 5 साल पहले कंप्यूटर का जमाना था, इससे 5 साल पहले मेडिकल का जमाना था, इससे 5 साल पहले फार्मेसी और एमबीए का जमाना था, इससे 5 साल पहले इंजीनियरिंग का जमाना था। यूजीसी हमारी कहती है, इस फॉरम से तो मैं कम से कम बोल सकता हूं, यूजीसी हमारी कहती है कि दर 3 साल में आप कोर्सेज चेंज कर लो, आपकी सिलेबस जो है वो इंडस्ट्री रेडी होने चाहिए और एम्प्लॉयबल होने चाहिए। इसलिए हम रिसर्च में एक्सेलेंस नहीं ला पा रहे, क्योंकि हम कंटिन्यूअस सिलेबस चेंज करते जा रहे हैं, इंडस्ट्री को जो चाहिए वो हम दे रहे हैं। बेसिक एजुकेशन इज समथिंग डिफरेंट। 12वीं का छात्र क्या पढ़ना चाहिए, उसका एक लेवल क्या होना चाहिए, वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। एक ग्रेजुएशन का छात्र क्या करना चाहिए, वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा, ना कि इंडस्ट्री को जरूरत क्या है। इंडस्ट्री बदलती रहेगी, उसकी रिक्वायरमेंट बदलती रहेगी, उसके हिसाब से हमने शिक्षा को परिवर्तित किया, इसीलिए हम ना रिसर्च कर पा रहे, ना एक्सेलेंस ला पा रहे, ना कोलैबोरेशन कर पा रहे, ना एक्सटेंशन एक्टिविटीज कर पा रहे। आप देखिए, जिसको आप तारीफ करते हो, सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, दे हार्डली चेंज देयर सिलेबस। जब आप पढ़ते थे तब कोर्सेज में हुआ करता था कार्बोहाइड्रेट, अंडर द कार्बोहाइड्रेट टीचर कैन टीच यू एनीथिंग। अब एक पेपर में 4 यूनिट है, चारों के कंटेंट डिफाइन है, इतना पढ़ाना है, इतना पढ़ाना है, इतना पढ़ाना है, फिर भी स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सेलिंग, दे आर नॉट परफॉर्मिंग। रीजन ढूंढना पड़ेगा, और रीजन यही है कि यू आर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग दी टेम्परामेंट ऑफ द एजुकेशन एंड दैट इज रूइनिंग द फैब्रिक ऑफ एजुकेशन। बहुत सारी बातें करनी है, फिर कभी, आपने यहां बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहेंगे, और गुजरात विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। ऐसे अगर कोर्सेज चलेंगे तो मुझे लगता है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ये सही मायने में सार्थक होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
Thank you, Brother Pandyaji. We have with us delegates from the world where we are being given or we are giving the children formal education, jisko hum kahe, jo hamari education system chal rahi hai. Ek taraf supreme teacher aakar apna education de rahe hain. Is education ka laksh hai self-improvement, self-development, self-enlightenment. Aur ye hai, kuch wahan se milta hai, kuch hai inner education. Aisi inner education ki misal hai hamari Rajyogini Didi B.K. Shilu ji. Nikola Tesla ne kaha hai, the gift of mental power comes from God, divine being. And if we concentrate our minds on that truth, we become in tune with this great power. Ye power hai silence ki, peace ki. Hum invite karte hain hamari didi, adarniya Rajyogini B.K. Shilu ji ko, jo vice chairperson hai education wing ki, wo hame meditation experience karayengi apne kuch shabdon ke saath, kuch demonstration bhi dengi, aur hum aaj unse ye demonstration lekar is silence ko feel karayenge. Adarniya didi ji.
ओम शांति जी. मैं निवेदन करूंगी, आप सभी भी कहें ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. शांति के सागर परमपिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परमात्मा की अति प्रिय संतानों, मंच पर आसीन हमारे महानुभाव तथा सभा में उपस्थित सभी शिक्षकगण, बहुत सुंदर विषय पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है, Values and Spirituality for Overcoming Challenges. जीवन में चुनौतियां तो बहुत आती है, लेकिन हर चुनौती का सामना करने के लिए जीवन में values अवश्य चाहिए. और values, मूल्य जीवन में तब आएंगे जब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता होगी. आज आध्यात्मिकता को कई लोग धर्म के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता धर्म शब्द से बहुत ऊंचा है. आत्मा का अध्ययन अगर कहें, ये शाब्दिक अर्थ दे सकते हैं आध्यात्मिकता को. आत्मा का अध्ययन, आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, हम कहां से आए हैं, क्यों आए हैं इस जगत में, जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कहां जाना है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, इन सब बातों को समझना और अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए अपने जीवन में मूल्यों को पहचानना, यही हमें आध्यात्मिकता सिखाती है. और इसका संबंध मेडिटेशन के साथ है. हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि मेडिटेशन क्या है वो हमें पता नहीं है. वैसे तो हम बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ते आए हैं. स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर शब्दों में मेडिटेशन का मेडिटेशन की परिभाषा दी है. व्हाट इज मेडिटेशन? इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन. मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन विच मीन्स ईच वन इज परफेक्ट विद इन. पर उस परफेक्शन को हमें प्रकट करना है, व्यक्त करना है, बाहर लाना है. और किसको हम कहेंगे परफेक्शन? जो हम जीवन में वैल्यूज चाहते हैं वो सब हमारे भीतर ही हैं, हमारे अंदर ही हैं. हमें इनको बाहर नहीं ढूंढना है. हम शांति चाहते हैं तो शांति भी हमारे भीतर है. खुशी चाहते हैं वो भी हमारे भीतर है. प्रेम चाहते हैं वो भी हमारे भीतर है. यहाँ तक कि ज्ञान चाहते हैं वो भी हमारे अंदर है. जो हम बाहर से लेते हैं वो तो सब इन्फॉर्मेशन है. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज कितनी विकसित हो चुकी है, लेकिन जब हम उसको आत्मसात करते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं और वो अंदर से निकलता है, वो वास्तव में ज्ञान है. और सबसे ऊंची बात उस ज्ञान में अपने आप को पहचानना. हम कौन हैं? जो सदियों से ये प्रश्न ही चला आया है, नो दाई सेल्फ, उसको समझना ये मेडिटेशन है. उस मेडिटेशन के द्वारा हम अपने परफेक्ट स्वरूप को पहचान लेते हैं कि वास्तव में मैं ये देह नहीं हूं, लेकिन इस देह के भीतर एक चेतन सत्ता हूं, अजर अमर अविनाशी हूं. इस शरीर से पहले भी मेरा अस्तित्व था और इस शरीर के बाद भी मेरा अस्तित्व रहेगा, क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी हूं. ये देह तो नश्वर है. और जब हम इस अंतर को समझने लगते हैं और ये महसूस करते हैं कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे हमारा ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है. आज हम देखते हैं दुनिया में कितनी होड़ है, दौड़ है, दौड़, दौड़ते ही रहते हैं, चाहे किस भी लक्ष्य को लेकर. हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं उसके पीछे लक्ष्य क्या है? आज जीवन में अगर सब कुछ मिल जाए, धन दौलत मकान जमीन जायदाद, बहुत सारी डिग्रीज पोजीशन, मान सम्मान इज्जत, सब कुछ जो हम चाहते हैं जीवन में सब कुछ मिल जाए मान लो, लेकिन फिर भी जब पूछा जाएगा कि अब तो आपको सब कुछ मिल गया, तो अंत में यही कहा जाएगा ये तो सब बाहर का है, हमें तो बस अभी शांति चाहिए, हमें तो खुशी चाहिए, हमें तो प्यार चाहिए. और विडंबना ये है कि जिन चीजों को हम ये जो चीजें जिनको हम ढूंढ रहे हैं, जो लगता है मेरे पास नहीं है, विडंबना है कि वो हमारे पास ही हैं और हम इनको ढूंढने के लिए बाहर भटक रहे हैं, लेकिन अंदर झांक कर नहीं देखते हैं कि ये हमारे पास ही है. तो वो झांकने का, अंदर झांकने की जो विधि है वो ही मेडिटेशन है. अर्थात हम अपने आप को पहचानने लगते हैं कि जो मैं चाहती हूं शांति, वो तो मेरा ही स्वभाव है. इसमें कई मिसाल भी दिए जाते हैं, जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी से उसको सुगंध आती है लेकिन वो हिरण समझता है कि ये खुशबू तो बाहर से है। तो शांति की खुशबू हमारे अंदर ही है, लेकिन हम सोचते हैं ये शायद कहीं और से मिलेगी, और सब कुछ पाने के बाद भी निराशा हाथ आती है। इससे सिद्ध है कि बाहर तो देख लिया पर अंदर झांक के नहीं देखा। तो मेडिटेशन से हम कैसे अंदर झांकते हैं, अपने आप को पहचान कर। बहुत सुंदर हम कई बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने इसके विषय में कही है, तो हम इसको प्रैक्टिकल में कैसे अनुभव करें। हम दूसरे से कभी अपनी कंपैरिजन नहीं करें, अगर कंपटीशन करनी है तो अपने साथ ही करें। कल से आज मैं अच्छा होऊंगा, आज से मैं कल और अच्छा होऊंगा, ये कंपटीशन अवश्य करे पर किसी और से नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक है, हर एक व्यक्ति विशेष है, हर एक आत्मा अलग अलग है। जिस आत्मा के लिए कहा जाता है आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है, तो अगर हम उसी अनुभूति में अपने आप को पहचानने लगते हैं तो सचमुच अपना मित्र बन करके अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने अंदर झांक कर नहीं देखा और अपने को नहीं पहचाना और बाहर के चकाचौंध में फंस गए तो अपना ही शत्रु बन करके अपने आप को दुख देंगे, और उसके लिए हम किसी और को ब्लेम न करें। हम अपने को भी ब्लेम न करें लेकिन हम अपने आप को समझाएं जरूर, और क्या समझाएं वही मेडिटेशन हमें सिखाता है। तो अपने आप से बातें करना, फिर भगवान से बातें करना, यही वास्तव में योग है। प्रार्थना हम करते हैं लेकिन प्रार्थना में हम अक्सर करके कुछ न कुछ मांगते हैं ईश्वर से, लेकिन मेडिटेशन हमें सिखाता है कि मांगो नहीं, आप अधिकारी हो। परमात्मा के जो गुण हैं वो आपके अंदर भी हैं, लेकिन सिर्फ उनको जगाने की आवश्यकता है, और जगाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो और उनसे संबंध जोड़ो। आज वो गुण नहीं अनुभव हो रहे हैं क्योंकि उनसे संबंध टूट गया है। पहला तो अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहे हैं, और दूसरा उससे संबंध हमारा टूट चुका है। जो पावर हाउस है, जो सोर्स है, जो सर्व गुणों का स्रोत है, इसलिए अंधकार अनुभव होता है। अब जब अपने अंदर झांकना शुरू किया और उनसे हमारा संबंध हो गया तो वही मेडिटेशन है जिससे हमारे जीवन में वैल्यूज आती है और हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। नहीं तो हम नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि गिरना तो बहुत सहज है, गिरने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन चढ़ने के लिए, उत्थान के लिए, ऊपर जाने लिए, ऊर्ध्व स्थिति को प्राप्त करने के लिए, वो भी अंतर से बाहर नहीं, उसके लिए क्या मेहनत करनी होगी, अपने आप को समय देना पड़ेगा। हम दूसरों को तो बहुत समय जरूर देते हैं, अपने अपनी डायरी में अपॉइंटमेंट्स होती है, इनसे मिलना, इनसे मिलना, इनसे मिलना, लेकिन अपने लिए अपॉइंटमेंट, खुद से अपॉइंटमेंट कि मैं क्या चाहता हूं, चाहती हूं, और वो अपॉइंटमेंट हम मेडिटेशन के समय खुद को दे सकते हैं। तो चलिए हम कुछ मिनट के लिए वो अनुभव करेंगे। जिस प्रकार एक कछुआ अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, अपने हाथ पैर सिर सब अंदर ले लेता है, इसलिए शिव के मंदिर में बाहर कछुआ भी दिखाया जाता है कि भगवान हमें कहते हैं अपने अंदर में जाओ, अपने अंदर में झांको, अपने अंदर में खुद को पहचानो कि मैं जो चाहता हूं वो मेरे अंदर ही है, और उसके लिए आत्मचिंतन करो, आत्ममंथन करो, आत्मनिरीक्षण करो, आत्मविश्लेषण करो, फिर आत्मसंयम हो तब उससे आत्मबोध होगा। आत्मबोध, आज बुद्ध पूर्णिमा है तो बुद्ध हाँ, कैसे उनको बोध हुआ? बोध वो एनलाइटनमेंट कहाँ से आई? जब उसने अपने अंदर में झांका। तो चलिए हम भी वो बोध करें, अपने अंदर में झांकें, अपने अंदर में अपने आप को पहचानें और परमात्मा से संबंध जोड़कर उस परम स्रोत से सर्वगुण शक्तियां प्राप्त करें। तो सीधा बैठेंगे, ये लाल प्रकाश हमें संकेत दे रहा है। पहला संकेत है इस बाह्य जगत की जो बातें हैं उनको स्टॉप, ब्रेक। और दूसरा संकेत है कि आप इस संसार के वासी नहीं हो, तो अंतर की यात्रा के साथ साथ ऊपर की यात्रा। हम तो इस दुनिया में मेहमान हैं, हम इस सृष्टि मंच पर एक्टर्स हैं, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, दो दिन का बसेरा है, फिर लौट के जाना है। तो कछुए समान इंद्रियों को सिकोड़ना अर्थात करटेल करना, अपने अंदर में अपने झांकना, और फिर इस संसार की जो भौतिक बातें हैं उनको लेट गो करके लेट गॉड उसको स्वीकार करना और एक पंछी बनकर ऊपर की यात्रा करना, स्वतंत्र बन जाना इस संसार के झमेलों से। तो सीधा बैठेंगे, अपने आप से पूछें, अपने आप से ही बातें करें, मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं जो विनाशी है? जो परिवर्तनशील है? जो अस्थिर है? नहीं, खुद को ही उत्तर दे, मैं एक अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं। एक चैतन्य शक्ति हूं। मेरे अंदर सोचने की शक्ति है। निर्णय करने की शक्ति है। कर्म करने की शक्ति है। मैं वास्तव में एक दिव्य शक्ति हूं। एक डिवाइन एनर्जी हूं जो अति शुद्ध हूं, पवित्र हूं, मेरा मूल स्वभाव शांति है। यही मेरा वास्तविक धर्म है। शांति की शक्ति मुझ चेतन सत्ता में है। मैं वो आत्मा हूं। जो न जल सकती हूं, न कट सकती हूं, न सूख सकती हूं, न गीली हो सकती हूं, प्रकृति के प्रभाव से परे एक अनंत यात्रा पर निकली हूं। अपने दिव्य धाम से ये जीवन तो केवल एक पड़ाव है। मुझ आत्मा का रैन बसेरा, मुझ आत्मा का आशियाना, सच्चा घर तो पांच तत्वों की दुनिया से बहुत दूर, शांति की दुनिया है। यहां तो केवल कर्म करने लिए आई है। अब मुझे वापस जाना है। उसी शांति की दुनिया में तो भीतर भी शांति और उड़ान भरकर शांति की दुनिया में मैं शांत स्वरूप आत्मा पहुंच जाऊं। जहां बेहद शांति है और मैं आत्मा उस शांति के सागर परमात्मा के सानिध्य में आ गई। जो शांति का परम स्रोत है और उनसे निकलती हुई शांति की किरणें मुझ आत्मा को मिल रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं। शांति धाम का वासी हूं। शांति की शक्ति से भरपूर हो रही हूं। चले जाइए शांति के सागर में, जैसे बूंद सागर में समा जाती है। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति के सागर में समा जाऊं। और शांति की शक्ति को स्वयं में भरकर भरपूर हो जाऊं। अब वापस लौटे एक ऐसी यात्रा करके जहां से हमने शक्ति प्राप्त की, वापस कर्म क्षेत्र पर सृष्टि मंच पर कार्य करने लिए, कर्म करने लिए, पर एक नई सोच के साथ कि मैं वो शक्ति हूं, शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप हूं, और अब मुझे अपने मन, वचन और कर्म द्वारा भी इन मूल्यों को प्रकट करना है। तभी समाज में एक परिवर्तन आएगा और यह समाज सुदृढ़ बन सकेगा, एक स्वर्णिम युग आ सकेगा। ओम शांति शांति शांति।
आदरणीय दीदी जी ने हम सबको अंतर जगत की यात्रा कराई। दीदी जी का परिचय तो आपको उनकी वाणी से मिल ही गया है। वे वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका हैं एकेडमी फॉर द बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर की। यहाँ होने वाले सभी राजयोग शिविर उनके निर्देशन में संचालित होते हैं। वे टीवी चैनल्स में प्रवक्ता, महासम्मेलनों में वक्ता और अनुवादक हैं। मुख्यालय संयोजिका हैं शिक्षा प्रभाग राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन माउंट आबू में, पांचों महाद्वीपों में और 70 से अधिक देशों में उन्होंने भ्रमण किया है। इस ज्ञान की ज्योति को जो हम सब ने अभी प्राप्त की है, आइए हम इस विश्व में प्रसारित करें, फैलाएं। इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं अपने मंचासीन सभी अतिथियों को इस कैंडल लाइटिंग के प्रोग्राम के लिए। ये हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी। मंचासीन अतिथियों के अतिरिक्त कैंडल लाइटिंग के लिए हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर मधुकर एम वावरे, डिप्यूटी डायरेक्टर AICTE दिल्ली, प्रोफेसर PN शास्त्री, वाइस चांसलर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, डॉक्टर अमर प्रकाश गर्ग, वाइस चांसलर शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ, डॉक्टर वेद व्यास द्विवेदी, वाइस चांसलर CU शाह यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, डॉक्टर राजेश दीक्षित, वाइस चांसलर रेनेसेंस यूनिवर्सिटी इंदौर, डॉक्टर GK प्रभु, प्रेसिडेंट मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, डॉक्टर श्रीहरि ओनवर्ड, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे से हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भंडारिया, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली, डॉक्टर संजय कुमार झा, डायरेक्टर MIT यूनिवर्सिटी गुड़गांव, डॉक्टर V विजय लक्ष्मी, ज्वाइंट कमिश्नर KVS दिल्ली,
Dr. Neenu Tekchandani, Joint Director, National Institute of Fashion and Technology, Delhi. Dr. Shalini Sinha, Director MBA Technocrats Institute of Technology, Bhopal. Dr. Radhakrishnan Pillai, Deputy Director, Chanakya International Institute of Leadership Studies, Mumbai. Professor Ramesh Chandra G. Kothari, former Vice Chancellor, VNSGU, Surat. Professor CDR Bhushan Diwan, former VP, AKS University, Satna. Sabhi candle lighting ke liye kripya upasthit ho.
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए परिवर्तन की है ये बेला ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है सहज सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए
सुंदर माहौल और इस ज्ञान प्रकाश के साथ की हुई एक प्रतिज्ञा लेकर हम सभी जाएंगे हमारे बीच से हमारे कुछ गेस्ट प्रस्थान कर रहे हैं तो हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी और आदरणीय दीदी जी उनका सम्मान करते हुए ईश्वरीय सौगात प्रदान करते हुए आदरणीय शीलू दीदी जी और आदरणीय मृत्युंजय भाई जी पंडा जी का शॉल से सम्मान करके ईश्वरीय सौगात प्रदान कर रहे हैं तालियों के साथ शरीक होंगे इस सम्मान में डॉक्टर मोहित गंभीर जी का सम्मान और ईश्वरीय सौगात दी जा रही है अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम ज्ञान सरोवर ईश्वरीय आंगन से मिली इस सौगात को आप यादगार के रूप में अपने साथ ले जाएं और हम सब तालियों के साथ शरीक होते हैं Thank you. Dr. Ganpati Bhaskaran, Vice Chancellor, Tamil University, Thanjavur, आपको भी शॉल और ईश्वरीय सौगात के साथ सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच से कुछ गेस्ट विदा ले रहे हैं, लेकिन हमारे बीच हैं गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर गणपति भास्करन जी। ये हैं वाइस चांसलर तमिल यूनिवर्सिटी तंजावुर। आपने बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट फिलॉसफी, रिलीजन्स, कल्चर्स पर स्टडीज की हुई हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस आपका 37 इयर्स का है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी रहे हैं रिलीजन एंड कल्चर के। प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी रिलीजन एंड कल्चर के अलावा आप एसोसिएट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर रहे हैं 1989 से 1996 तक तमिल यूनिवर्सिटी तंजावुर में। आपके रिसर्च एक्सपीरियंसेस 25 इयर्स के हैं। पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च वर्क्स आपके लगभग 6 हैं और आप इस वक्त एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तमिल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। आपके कई पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चेस भी हैं। आइए हम इनकी वाणी सुनते हैं डॉक्टर गणपति भास्करन जी।
माय रेस्पेक्टफुल नमस्कार टू ऑल ऑफ यू एमिनेंट स्कॉलर्स ऑन द डायस एंड ग्रेट एजुकेटर्स ऑफ द डायस। It gives me a great pleasure to be here in this holy place and to participate in this Educators Conference on Values and Spirituality for Overcoming Challenges. For this, I would like to thank our chairperson, Rajyogi Mrityunjaya, and my brother Dr. Pandyamani. Now I would like to say something about spirituality and science. As science throws many challenges, though it gives many comforts to our physical body and the challenges to our spiritual needs and the questions of our faiths, doubts of our beliefs. But what we need is the interrelation between spirituality and science. In these days of great advances in modern science, there are undoubtedly some great men who have understood the basic synthesis between modern science on the one hand and spirituality and ancient wisdom on the other. Today many scientists recognize that the birth of this universe, its existence and expansion from conditions of apparent disorder and chaos, point towards a powerful principle of organization and orderliness, bringing about integration and harmony, which can be explained only by the plan and design of an intelligent power, which is not fully understood by man. Most of the scientists, when referring to the mysteries of the universe, tend to avoid any reference to God. The great scientist Einstein had no such inhibitions. He said, "My religion consists of a humble admiration of illimitable superior spirit who reveals himself if we are able to perceive the minute details with our feeble minds." that deeply emotional conviction of the presence of a superior reasoning power which is revealed in the incomprehensible universe forms my idea of God. That is his verse. In the early Indian and Greek philosophy of life, during the ancient times, science, the knowledge of matter, and spirituality, the knowledge of being, went hand in hand. The great scientist philosopher Aristotle believed that investigations pertaining to the material world are not so important for human welfare as compared to the knowledge and understanding of the soul and supreme being. For almost 1500 years, till about the medieval times, the growth of science in the West was dominated by the religious dogma of the Church. With the Industrial Revolution and softening of the hold of Church in Europe, somewhat mechanistic scientific investigations were carried out by Newton, Darwin, and others, and science seemed to be drifting away from spirituality in the direction of materialism. The resulting influence in India was felt right away. There had been a healthy synthesis of materialism and spiritualism in India as long as Vedic culture flourished. In the 18th century, British domination brought the philosophy of materialism to India, pushing spiritualism in the background. In spite of the fact that India became free over 70 years ago, the tide of materialism continued to sweep all over the country. Till today, Indian science and technology has not been able to provide peace and happiness to its people. However, some scientists are not out to conquer nature, but have the wisdom and the humility of deeper understanding that science by itself cannot stand alone and bestow happiness and a peace of mind to the humanity. Such scientists and thinkers, though few in number, are coming forward to show the mutual interrelationship of science and technology on the one hand and spirituality on the other. Their efforts have opened up for science a new window through which it would get a complete and integrated worldview of matter, man, and his being. This relationship hopefully will grow and help science to operate on a fundamentally higher plane than hitherto. This new alliance of spirituality would eventually give to mankind the understanding of the ultimate truth, which will elevate man in his own self-esteem and dignity to manhood, sublimate his living and guide him to conform his living to peace, order, and harmony in nature. Thus, science will give man material comforts and enrich his life, while spirituality will expand his mental horizons and ennoble his life. The trend of fundamental research in modern science shows that many of the Vedic theories are becoming scientifically tenable and acceptable to research scientists. According to Einstein, the day is not far off when physics and metaphysics will walk hand in hand. Then the total knowledge system will include both physical and spiritual sciences. According to Vedanta, life, spirituality, and science go together, and the dimensions of Vedic knowledge are unimaginably vast, embracing all the branches of science, technology, medicine, etc., known to man today. Research scholars have proven the fact that several new concepts science has now developed were known to the ancient sages of India. The ancient text contained the scientific information on atomic properties of substance, sattva, rajas and tamas, and even on subjects like genetics, on DNA like that. The fact that knowledge in the Vedas was acquired by the ancient thinkers through intuitive perception and inner revelations creates some doubts and misgivings to the scientists of today. It is well known that science adopts laborious methods of observation, collection of data, experimentation, analysis, etc. On the other hand, in spirituality, knowledge and wisdom flow from intuition, a powerful faculty latent in man. Knowledge flows unabated from the inner consciousness when intuition gets activated and the inner eye is opened. Spirituality describes intuition as the inner intelligence, and faith which grasps reality completely and spontaneously and is not necessarily based on any scientific reasoning or deduction. Surprisingly, some of the great discoveries did not emanate from scientific observation alone. Those men of genius had also qualities such as creative imagination and intuition. The intuitive flashes received by the scientists in the quest for truth led to the famous discoveries like Newton's law of gravitation and Darwin's theory of evolution. It is a well-known fact that all great men are endowed with a strong intuition or inner voice. At the same time, it should be understood that the process of experimentation does not belong to science alone. For spirituality also uses experimentation with measurable results. Its experiments are called sadhana, which are yogic exercises and disciplines carried on one's own body, not as a biological unit, but as a living laboratory of atmic consciousness. In other words, experiment and experience go hand in hand in spiritual advancement. From study to experimentation, spirituality has a scientific approach, just like science, with very positive results in developing in man the perception and the realization of the ultimate truth, the God. Hence, the focus of my paper is spirituality and science must go together in this modern society, because in this modern society, the man, so-called modern man, are completely conquered by science. To meet the challenges thrown by that science, the only solution is spirituality. For that spirituality, the great organization, this holy organization, has developing some valuable courses like spiritual education, value education, like that. It is the need of the day, it is the need of the society, it is the need for our youth. Thank you.
और अब आपके सामने आ रहे हमारे एजुकेशन विंग के भ्राता राजयोगी डॉक्टर बी के मृत्युंजय जी. He is a great visionary man. उनकी कोर्सेज की जब ये शुरुआत हुई थी 2009 में, तो उनका ये विजन था कि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन तैयार हों जो सारी दुनिया में इस कार्य को कर पाए, और उनके इस विजन का ये रिजल्ट है कि आज भारत और भारत के बाहर बहुत से देशों में ये कोर्सेज चल रहे हैं. यू हैव ऑलरेडी गॉट अ ग्लिम्स फ्रॉम डॉक्टर पांडेमनी स्पीच. ही इज अ जनरस हार्टेड मैन, एंड आप उनकी वाणी का फ्लो सुनेंगे. पॉजिटिव थॉट्स का बहुत बड़ा भंडार है. ही इज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू. ही इज चेयरपर्सन ऑफ एजुकेशन विंग RE&RF. आदरणीय भ्राता जी,
आपस में जो भाई बहन हैं, हाथ से हाथ मिलाएं, नहीं तो अपने कंधे पर हाथ लगा करके एक दो को अप्रिशिएट करें, मुस्कुरा के. क्योंकि बहुत समय से आप सभी बैठे रहे, सुनते रहे सुनते रहे, इसके लिए आपकी क्षमता देकर के मुझे बहुत खुशी हुई और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए इस बहाने। अच्छा प्लीज बैठिए बैठ। सर्वप्रथम परम शिक्षक परम सद्गुरु परम पिता को आवाहन करते हुए उनकी साकार माध्यम अव्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को आवाहन करते हुए और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षा को जगत में प्रचार प्रसार करने की उनकी साकार माध्यम मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को मैं याद करते हुए इस सभा में उपस्थित सर्व शिक्षकों को हम कहते हैं आचार्य देवो भवा, गुरुदेवो भवा, मातृदेवो भवा। इसमें टीचर्स में ये तीनों क्वालिटी है, खुद आचार्य भी है, माता पिता भी है और कुछ गुरु भी है। इसके लिए इन तीनों विशेषता को अपने जीवन में साक्षात्कार करके समाज की सेवा में संलग्न सभी टीचर्स को मैं प्रणाम करता हूं। ओम शांति नमस्ते। आज की विशेष इस सत्र में स्वागत एवं उद्घाटन सत्र में अभी तक हम लोगों ने जो वक्तव्य सुने हैं इसमें विशेष करके मोहित गंभीर जी, मोहित भी है गंभीर भी, ये दोनों नाम मुझे भूल नहीं सकता है, क्योंकि मोहित हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय के बचपन के हमारे एजुकेशन प्रोग्राम चलता रहता है, यूथ प्रोग्राम चलता रहता है, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता रहता है, उसमें आते थे पहले। आज एक बहुत बड़े डॉक्टर है मोहित, डॉक्टर मोहित है, इसके लिए उनको भी याद करते हैं। गौतम गंभीर तो आप सभी जानते ही है, इसके लिए गौतम गंभीर, वो दोनों नाम आपके अंदर है, इसके लिए आपको हम भूल ही नहीं सकते, बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात कारण से आपको भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि AICTU के साथ हमारा एक टेक्निकल कोलैबोरेशन हुआ है, एक संबंध है, एक दैवी संबंध है, एजुकेशनल संबंध है। इस संबंध को प्रमोट करने में आपका भी योगदान है और आपका चेयरपर्सन जो सहस्र बुद्धे है और इसके पूर्व की डायरेक्टर है उसका भी हमारे इस संस्था से जुड़ा हुआ है, इसके लिए आपके इंस्टीट्यूशन से भी रिलेशन है, व्यक्तिगत का भी संबंध हो गया और आपकी साथ में इतने बड़े सुंदर वक्तव्य सुनने के बाद में मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरा मिस्टर भास्करन, गणपत भास्करन जी भी, इट इज ग्रेट इन डीड एन ऑनर फॉर मी टू मीट यू इन दिस ऑगस्ट गैदरिंग बिकॉज आई हैड द प्रिविलेज एंड ऑनर ऑफ मीटिंग यू इन यूर यूनिवर्सिटी and it was also an honor for signing an MOU with you, and at that time I had invited you and different occasions also I had invited you, somehow you could not make it possible, but today you are here, I greatly welcome to you, it is an honor for me। aap sab ki taraf se, main sanstha ki taraf se aapko bahut bahut swagat karta hu, kyunki aapke sath bhi ishwari vishwavidyalaya ka sambandh hai, ek MOU ke madhyam dwara juda hua hai aur hazaron students jude hue hai, इसके लिए आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरा, अभी अभी हिमांशु पांड्या जी हमारा सम्मुख में, उनको शाम को चीफ मिनिस्टर उनकी यूनिवर्सिटी में प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए प्रस्थान किया, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि प्रोफेसर हिमांशु का नाम भी हमारे लिए एक चिर रहता है, शाश्वत रहेगा, क्योंकि इस बिल्डिंग का, इस प्रांगण का, इस ज्ञान सरोवर का जो कंसेप्ट है एक हिमांशु ठक्कर ने किया था, इसके लिए हिमांशु ठक्कर भी याद रहेगा, हिमांशु पांड्या भी याद रहेगा, क्योंकि बहुत खुशी की बात। दूसरे भी हम लोगों को इस सभा में बहुत लोग हैं, मिस है प्रोफेसर PN शास्त्री जी, वाइस चांसलर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर अमर पार्किंग प्रकाश गर्ग जी है, वाइस चांसलर मेरठ से आए हुए, डॉक्टर वेद व्यास द्विवेदी है वाइस चांसलर और अहमदाबाद से, डॉक्टर राजेश दीक्षित वाइस चांसलर रेनेसांस यूनिवर्सिटी इंदौर, डॉक्टर जीके प्रभु प्रेसिडेंट मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, डॉक्टर श्रीधर हावर्ड जी है MIT से वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, मुझे प्रिविलेज था इस यूनिवर्सिटी में दो बार तीन बार मैं गया हूँ अलग अलग कार्यक्रमों में, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भंडारिया और दूसरे डॉक्टर संजय कुमार झा डायरेक्टर अमित यूनिवर्सिटी गुड़गांव, डॉक्टर विजय कुमार लक्ष्मीबेन जैन कमिश्नर KVS, क्योंकि KVS कि बहुत मेरे कार्यक्रम इधर भी हुए हैं, अलग अलग स्थानों पर भी हुए हैं। इसके लिए इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ में डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ला है, प्रोफेसर रामेश्वर रामचंद्र जी कोठारी जी, फॉर्मर वाइस चांसलर सूरत, और भी भूषण देवन जी, फॉर्मर वाइस चांसलर, और भी बहुत लोगों का नाम इसमें मिलता है, इसके लिए मुझे क्षमा चाहता हूँ। मेरा अपनी दृष्टिकोण से, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन? टू मी द वेरी पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक एन इंडिविजुअल ए पावरफुल बीइंग, पीसफुल बीइंग, ब्लिसफुल बीइंग, नॉलेजफुल बीइंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ए ट्रूथफुल बीइंग। व्हाई? वी बिलीव दैट नॉलेज इज पावर। इट इज एन अनफॉर्चुनेट नाउडेज मस्कुलर पावर इज पावर, मनी पावर इज पावर, मिलिट्री पावर इज पावर, न्यूक्लियर पावर इज पावर, बट आई बिलीव न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस इज पावर। ये न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस कैसे हो सकता है? यू कैनॉट बाई फ्रॉम द मार्केट, बट यू कैनॉट अडॉप्ट इट बाई अनदर वे, बट ओनली थ्रू स्टडी, स्पिरिचुअल एजुकेशन के माध्यम द्वारा, योग के माध्यम द्वारा, इस माध्यम के द्वारा न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस। द वेरी पर्पज ऑफ अवर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इज टू मेक ए न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस, बिकॉज न्यू वर्ल्ड इज बींग एस्टैब्लिश। न्यू वर्ल्ड में ये पुराना दुनिया हो चुकी है। इस कलयुग को देखते हैं, इस कलयुग का दृष्टिकोण हम लगाते हैं, तो मुझे क्या लगता है, नंबर वन, द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मनुष्य का मस्तिष्क को अपराधीकरण की ले जा रहे हैं। हर सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा लीगल सिस्टम, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, हमारा सोशली के कल्चरल सिस्टम, सभी देखते थे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, अपराधीकरण की तरफ इस दुनिया को लेके जा रहे हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है? अब सेकेंड वन इज कम्युनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जातिकरण, नीतिकरण, आध्यात्मिकरण, दैवीकरण, पवित्रीकरण की बजाय कम्युनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। थर्ड वन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एवरी ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एजुकेशन, शिक्षा को भी व्यापार बना दिया। इसका दुष्परिणाम हम समाज में देखते हैं। इसके लिए इसको आध्यात्मिकरण की जरूरत है, नैतिकरण जरूरत है। बहुत चैलेंजेस है हमारे समाज में। मैं इंडिविजुअल चैलेंजेस नहीं देखता हूं, होलसेल कलेक्टिव चैलेंजेस जो है इस समय में देश में, विश्व में, कोने कोने में देखने को मिलता है, इसका सोल्यूशन कौन देगा? हु विल गिव द सोल्यूशन टू द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम, वेदर इज अ पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, नेशनल प्रॉब्लम, ग्लोबल फैमिल, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। दूसरा जो है पॉल्यूशन, एवरीवेयर एनीवेयर पॉल्यूशन है। इट इज मेंटल पॉल्यूशन है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु इस पॉल्यूशन को शिक्षा वैद्य सॉल्यूशन नहीं देंगे तो कौन देगा? आई स्टिल बिलीव एजुकेशन इज द होप फॉर अ मैनकाइंड। देयर इज इन प्रीएम्बल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूएन इज होप फॉर अ मैनकाइंड, but I do not believe and agree with that, because we have seen after the establishment of the United Nations, several war took place, somehow still going on. God is hope for a mankind. God ka wisdom ko jeevan mein translate karke samaj ko vistrit karne ke liye, distribute karne ka jo yadi kshamata hai, shakti hai, pragya hai, gyan hai, commitment hai, to kiske paas hai? Shikshakon ke paas hai. क्योंकि दट्स वे विषय आचार्य देवो भव, शिक्षक देवो भव। इसके क्योंकि देवो भव क्यों कहते हैं? मंत्री देवो भव नहीं कहते, इंडस्ट्रियलिस्ट देवो भव नहीं कहते। बड़े उनके पास पैसा है, मंत्री पास अधिकार है। पहले भी हमारे बहन ने कहा, इफ ए मिनिस्टर मेक ए मिस्टेक, इट कैन बिकम ए बैड लॉ, दैट लॉ कैन बी चैलेंज्ड इन द सोसाइटी, आइदर इन द पार्लियामेंट और इन द कोर्ट ऑफ लॉ और अगेन इन द री इलेक्शन। सो ऑल्सो an administrator, if we make a mistake, that mistake can be buried in the file. If a judge make a mistake, we can go to the higher court. A lower court galti karta hai to dusri high court mein ja sakta hai, high court se supreme court ja sakta hai, baad mein udhar bhi nahi ho sakta hai to bench mein ja sakta hai kaise. If a teacher makes a mistake, kiske paas jayenge? Their lives will be buried. Usko duniya mein, भविष्य में उसके भविष्य अंधकार हो सकते हैं। इसके लिए टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जवाबदारी है। भले उनको कम सैलरी मिलता हो, उनको रिकग्निशन कम मिलता हो, उनको सम्मान कम मिलता हो, क्योंकि मंत्री जी के पीछे भागते हैं, परंतु टीचर इस दुनिया को बेहतर बनाने में, इंसान बनाने में, महा देश को स्वच्छ बनाने के कार्य करने की क्षमता अधिक से अधिक है तो टीचर्स के। परंतु इसके लिए हम लोग कहते हैं भगवान इस धरती पर आता है तो पहले कैसे बन के आता है, टीचर बन के आते हैं। दिस यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश बाई द एक्ट ऑफ गॉड। जनरली यूनिवर्सिटीज इज एस्टैब्लिश बाई द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन, और डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट भी है, परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विशेषता है दिस वॉज एस्टैब्लिश बाई द एक्ट ऑफ डिवाइन, परमात्मा की पुनर्अवतरित होकर के इस शिक्षा को स्थापित किया। इसके लिए इसका कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इट इज एन यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी। वी हैड ए प्लेजर दी दिन हरि गौतम चांसलर सॉरी उसका कहा था यूजीसी चेयरमैन थे, इन्होंने यहां एक कार्यक्रम में आए थे, उस समय कहा इट इज एन यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी, इट इज ए गॉडली यूनिवर्सिटी, इट इज ए स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, ऐसा बोल करके संबोधित किया था। मैंने कहने की भाव यह है वी हैव गॉट ए नेशनल यूनिवर्सिटी, रीजनल यूनिवर्सिटी, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट देर इज ओनली वन यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी, दैट इज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। बिकॉज यूनिवर्सल ट्रूथ इज बींग थॉट हियर, यूनिवर्सल बींग, मनुष्य को बींग को खत्म कर दिया, इसके लिए ये आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। इस नॉलेज को पावर कहां जाता है, तो पावर कहां से आएगा, स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअल एजुकेशन को देने के लिए। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, व्हेन वी बिल्ड दिस ज्ञान सरोवर देयर वाज अ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी, उस समय में एक पार्लियामेंट्री कमिटी इधर आए थे, उन्होंने सारा देखने के बाद में उन्होंने कहा आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस देंगे ऐसा, हमने मना कर दिया। हमारा बड़ा भाई थे जगदीश जी, उन्होंने भी मना कर दिया डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। क्यों? इस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है, त्याग तपस्या सेवा। हमारे यूनिवर्सिटीज में त्याग तपस्या सेवा पढ़ाया नहीं जाता। क्यों? हम पैसा लेना, गवर्नमेंट से पैसा लेना, भारत सरकार से पैसा लेना, पब्लिक से पैसा लेना, पैसा लेने के लेकर के उनको त्याग तपस्या सिखा नहीं सकते। इसके लिए उस समय में जगदीश जी ने भी कहा, हम लोगों ने कहा, वो हैरान हो गया, पार्लियामेंट्री कमेटी खुद आकर के आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस दे रहे हैं, आपको मना कर दिया। क्यों? गॉडली यूनिवर्सिटी कैनॉट बी मेड इन ए डीम्ड यूनिवर्सिटी बिकॉज सेवरल यूनिवर्सिटीज आर डूम्ड यूनिवर्सिटीज नाउ, सॉरी। इसके लिए मैं ये बात इसके लिए कहना चाहता हूं, ये गॉडली यूनिवर्सिटी, मैं ईश्वरी शिक्षा प्राप्त करने का समय जब 1968 में जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था तब मुझे अचानक ज्ञान मिला। तब तो वो हिंदी नहीं आता था, आज भी नहीं आता इतना, परंतु मैं आने के समय में बाबा का महावाक्य सुना था, बाबा का माना ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा ने जो कहा था, बच्चे आगे चल करके हजारों सेंटर खोलेगा, बाबा ने कहा देश विदेश में सेंटर खोलेगा, ये भारत को स्वर्ग बनाने के विश्वविद्यालय ले, भारत को स्वर्ग बनाने की दैवी स्वराज बनाने के ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्योंकि भारत का स्वर्ग कैसे बनेगा, भारत में रहने वाले आत्मों को पवित्रीकरण, दैवीकरण, आध्यात्मिकरण, ये करण करने के लिए शिक्षा हमारे पास नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे नॉलेजफुल, दूसरी दूसरे क्षेत्र में डिग्री मिलेगा, लॉयर बनेगा, बहुत कुछ मिलेगा, परंतु आजकल लॉयर का काम क्या है आपको, यू नो द वन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टू मी, आई वुड लाइक टू शेयर दैट वन। तो भारत की प्रधानमंत्री तत्काल इंदिरा गांधी जी को डे लाइट में खून किया किया था ना, आप सबको याद है, उसका बॉडीगार्ड ने किया था, परंतु जो बॉडीगार्ड को सजा करने के वर्तमान समय के कानून के हिसाब से कितने समय होना चाहिए, कितने समय होना चाहिए सर, एक मास, दो मंथ और सिक्स मंथ, परंतु सेवन ईयर्स लिया था। और जिन्होंने खून किया उसकी पक्ष में आर्ग्यूमेंट किया था इस देश के बहुत नामी ग्रामी वकील रहे, माना हम लोगों ने डिग्री दे करके डॉक्टरेट दे करके वकील बना करके झूठ बोलने के सिखाते, झूठ बोलते रहेंगे तो समाज में सोशल जस्टिस कहां मिलेगा। शिक्षा दे करके, समाज की पैसा खर्च करके, सरकारी पैसा दे करके, इसको स्टेटस दे करके हम कर, मैंने इस हर व्यक्ति को नहीं कहता हूं, बहुत लोगों ने ऐसे मोर देन 50% दे इन्वॉल्व इन सच केस, कितने लोगों को महात्मा जैसे व्यक्ति को निर्माण किया, महात्मा गांधी के सामने भी ये परिस्थिति आती थी, वकील भी था, परंतु उन्होंने कभी झूठा केस को एक्सेप्ट नहीं किया था। हम भारत के स्वतंत्र होने के बाद में 70 साल से ऊपर हो गया, एक भी महात्मा गांधी को हम तैयार नहीं कर पाए, एक भी विवेकानंद को तैयार नहीं कर पाए, एक अब्दुल कलाम रिसेंट में तैयार किया, परंतु मेरे को दुख होता है जब प्रेजेंट डे सोसाइटी को देखते हुए, सिस्टम को देखते हुए, और दूसरे जो वर्तमान समय को देखते, लगभग दो मास के अंतराल की भारत की संस्कृति को देखता हूं, वो पब्लिसिटी को देखता हूं, ईर्ष्या द्वेष नफरत को फैलाने का विधि बन चुके हैं। अवर डेमोक्रेसी, अवर पॉलिटिक्स, अवर गवर्नेंस हैज बिकम टू क्रिएट, टू सस्टेन, प्रमोट एंड पैटर्नाइज ईर्ष्या द्वेष नफरत को फैलाने के विधि बन चुके। इस समय में आध्यात्मिकता की शक्ति की आवश्यकता है, ज्ञान की शक्ति आवश्यकता है, तो नॉलेज डिस्पेल द डार्कनेस हम कहते हैं, अंधकार को मिटाने का। अब अंधकार मिटाने के कार्य हम यूनिवर्सिटी, शिक्षाविद और हमारा पाठ्यक्रम, हमारा कोर्सेस आदि आदि, यदि अंधकार को मिटाते हैं तो ये भय क्यों होता है, अज्ञान क्यों होता है, अशांति क्यों होता है, शोषण क्यों होता है, हिंसा क्यों होता है, इतनी हिंसा हो रही है, रोज हिंसा, परंतु नॉलेज शुड डिस्पेल ऑल दिस, भयमुक्त, रोगमुक्त, पापमुक्त, दुखमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, परंतु हमारा शिक्षा भ्रष्टाचार से मुक्त करने के बजाय भ्रष्टाचारियों को निर्माण करने के कार्य में प्रमोशन हो रहा है। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि इसी के लिए आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता है, इसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसी शिक्षा देते हैं, योग की शिक्षा और त्याग की शिक्षा, पवित्रता की शिक्षा, जो पवित्रता की शिक्षा जो धारण करेगा, जहां मन शुद्धि होगा, उनको सब कार्य शुद्ध। मैं आप सबसे भाषण करने के लिए नया हूं, एक गिफ्ट लेने के लिए खड़ा हूं, आप सभी देंगे गिफ्ट, कौन कौन देंगे हाथ खड़ा करें, वह इन सबके लिए ताली बजाए, कौन सी गिफ्ट देंगे आपको? मुझे पैसा नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, वह आपके जेब खाली नहीं करना चाहता, आपके दिमाग में एक चीज है, इसको किस किस को क्रोध नहीं आते हाथ खड़ा करें, धन्यवाद साहब के लिए एक थाली बजाए। जहां क्रोध आता है तो किसका चेहरा खराब होता है, किसका चेहरा खराब होता है, खुद को आता है, बाद में दूसरों को होता है। क्रोध पॉजिटिव सोच है, नेगेटिव सोच है, नेगेटिव है ना, यदि क्रोध का संस्कार को अपना जीवन में समावेश हो जाता है, उनको स्टेटस के कारण से, पैसे के कारण से, व दूसरों की झूठ के कारण है, दूसरों की गलती, कई भी कारण हो सकता है, परंतु क्रोध करता है तो पहले हमारा हेल्थ के ऊपर एस्पेक्ट प्रभाव करता है, उसके बाद में अपने चेहरे पर प्रभावित करता है, अपने आंखों के प्रभावित करते हैं, अपने लंग्स के ऊपर प्रभावित करते हुए, हार्ट के ऊपर प्रभावित करते हैं, नर्वस सिस्टम डैमेज होता है नहीं होता है। सो क्रोध मुक्त क्यों नहीं बन सकते हम? इतने इसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या शिक्षा है, सबसे पहले जो है क्रोध मुक्त जीवन जीने की कला सिखाने। भय तब होता है, भय का कारण क्या है, अज्ञान से भय होता है, अपवित्रता से भय होता है, पाप से भय होता है और अनेक रोग से भय होता है, परंतु इनसे मुक्त होने के लिए विधि है कौन सी? क्या हम लोग बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बोला, मेडिसिन इन्वेंशन किया, बड़े बड़े डॉक्टर को तैयार किया, फिर भी उससे भय मुक्त है? नहीं है। इसके लिए समथिंग इज मिसिंग इन अवर लाइफ, समथिंग इज मिसिंग इन द सोसाइटी, समथिंग मिसिंग इन द एजुकेशन सिस्टम, दैट इज स्पिरिचुअल एजुकेशन। जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है तो भय मुक्त हो सकता है। मिसाल के तौर पर गौतम बुद्ध अंगुली माला के पास जाता है, उससे पहले तो राजा नहीं जा सकते, बहुत लोग नहीं जा सकते, क्योंकि अंगुली माला का नाम सुनते ही डर जाते हैं, परंतु वो जाता है क्योंकि उसका मृत्यु केवल भाड़ी का मृत्यु नहीं है, वो जाने के बाद में भी वो उसको मारने के लिए कोशिश करता है, परंतु उनकी क्षमा करने की दया का, प्रेम के, वात्सल्य के जो गुण देकर के कुछ परिवर्तन होकर के, आप इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, वापस उसको शिष्य बना कर लेके। यदि समाज को सुधारने की विधि है तो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी है। इतिहास में भी देखी है, इतिहास में भी देखी है, बहुत ऐसी इतिहास की है। मुझे एक प्रसंग का याद आ रहा है, जो शंकराचार्य जब ओंकारेश्वर के टेम्पल पर जा रहा था, उस समय तो कोई प्लेन नहीं था, वो कार नहीं था, आदि नहीं थे, वह सिक्योरिटी नहीं था, अकेला जा रहा था, उसके पेड़ के नीचे तक गए के सोया हुआ था, बैठा हुआ था, उसके सामने एक शेर आ जाता है। आपके सामने अकेला हो तो शेर आ जाए तो क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, जो करना है तो शेर ही करेगा, शेर ही करेगा। परंतु उसको, वो प्राणी को देख करके, उस क्रूर एनिमल को भी देखते हुए उसको डर नहीं लगता है, भय नहीं होता है, और उसको भागने के लिए नहीं कोशिश करता है, परंतु उसको वाइब्रेशन देता है, प्योर एंड पॉजिटिव फीलिंग देता है, प्योर एंड पॉजिटिव। आप सभी देखा होगा एनिमल्स में सबसे बड़ा गुण है, जहां प्योर एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है उसका कैच करता है। अभी भी दुनिया में कभी भी अर्थक्वेक होता है तो सबसे बड़ा मैसेज किसको जाता है? एनिमल्स रिसीव करते हैं। हमारा सैटेलाइट फेल्यूर हो जाता है, एनिमल्स उसको रिएक्ट करता है। इतनी साइंस की एडवेंचर हमने किया, एडवांसमेंट किया, इन्वेंशन किया, परंतु उससे पहले तो एनिमल्स कुत्ते को मालूम पड़ जाता है और डॉग्स को मालूम पड़ जाता है और भी अलग अलग एनिमल्स को। मैं कहने के भाव यह है, वाइब्रेशन को कैच करते हैं। ऐसे ही वो शेर भी उनके सामने आता है तो उसको मुस्कुरा करके हंसते हुए देखते हैं। मैं ये नहीं कहता आप सभी ऐसे ही करो, परंतु मन में शुभ संकल्प को जनरेट करो, शुभ भावना को जनरेट करो, दुश्मनी नहीं बनाओ। यदि शुभ भावना को जनरेट करेंगे वो कहां से करेंगे? इसके लिए स्पिरिचुअलिटी का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वैल्यूज को अडॉप्ट करना चाहिए, सहन करने की शक्ति भी होना चाहिए और अनेक दैवी गुणों की आवश्यकता है। इसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चार सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, धारणा माना दैवी गुणों का धारण करना, और सेवा भाव। हमने बच्चों को पढ़ाते पढ़ा करके लास्ट तक में लेके आते हैं डिग्री दे करके, उनको क्या भावना है? सेवा भाव कम, लेवा भाव ज्यादा हो जाता है, लेवा भाव। ईश्वरीय विश्वविद्यालय कैसे पढ़ रहे हैं? सेवा भाव, तन से, मन से, धन से, समय से, संकल्प से, वाणी से, उनकी संबंधों से, उनकी चरित्र से इसके विकसित हो रहा है। इसके लिए समाज को इस दिशा में हम लेके जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। बाबा का विजन है, बाबा का ये मिशन है, कुछ ही समय के अंतराल में भारत विश्व गुरु बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी से विश्व गुरु बन सकते हैं नहीं बन सकते मुझे गारंटी नहीं दे सकता हूं, परंतु भारत का वर्ल्ड लाइट हाउस कहां जाते थे? परंतु उस समय में आध्यात्मिकता की शक्ति थी, अभी आध्यात्मिकता का आत्मा में शक्ति नहीं। क्यों शक्ति नहीं है? किसी को टेंशन आता है, वह वाइब्रेशन आता है, वह थॉट में कोई नेगेटिव आता है, उसको कंट्रोल खुद भी नहीं कर सकते। स्ट्रेस 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 स्ट्रेसफुल लाइफ। क्यों स्ट्रेसफुल है? आत्मा कमजोर हो गया, आत्मा कोई ना कोई पाप कर्म करके दुखमय हो गया आत्मा। इसके लिए पाप आत्मा, नीच आत्मा, दुरात्मा, चंडाल आत्मा आदि क्वालिफिकेशन जो है, आत्मा को एड्रेस किया जाता है, शरीर को एड्रेस नहीं किया जाता। परंतु जब तक आत्मा शरीर में है वो सफरिंग है, इसके लिए वो सफरिंग से मुक्त करना, सारों से मुक्त करना, भय से मुक्त करना, पाप से मुक्त करना के लिए शक्ति कहां से मिलेगा? इट इज द डिविनिटी, इट इज द डिवाइन रिलेशनशिप। इसके लिए योग है। इसके लिए योग माना केवल संन्यास धारण करने की बात नहीं, परमात्मा का परिचय लेकर के उसका संबंध, क्योंकि परमात्मा आखिर हमारा पिता है, वो दया सागर है, प्रेम सागर है, करुणा सागर है, क्षमा सागर है और वरदानों से वर्षा करने वाले, सिर्फ भाषण करने वाले नहीं, वरदान देने वाले। इसके लिए बाबा का वरदान मिलता है, परमात्मा का वरदान, वो वरदान लेने की पात्रधारी भी बनना चाहिए। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है आप सभी शिक्षक लोग इधर आए हैं और यहां से वरदान लेके जाए और ईश्वरीय महावाक्य लेके जाए, क्योंकि नॉलेज इज पावर कहा जाता है ना, ईश्वरीय महावाक्य जो है एक एक शक्ति का स्तंभ बनकर के आएंगे। बी ए शांति का टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ हैप्पीनेस, टावर ऑफ मर्सी, ऐसा बनकर के जावे। ऐसा बन के जाने वाले सब शिक्षकों को मैं प्रणाम करते वाणी के विराम करता हूं। ओम शांति, नमस्ते।
थैंक यू भाई जी। हमारे बीच डॉक्टर राजेश दीक्षित जी उपस्थित हैं, वाइस चांसलर रेनेसेंस यूनिवर्सिटी इंदौर। वे भाई साहब का सम्मान करना चाहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से मोमेंटो देके। भाई साहब का सम्मान करने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर राजेश दीक्षित जी। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी के शब्द आपने सुने और इस फ्लो को अपने में समेटने के लिए आपको थोड़ा अलर्ट होकर और तालियों के साथ We have listened Dr. Mrityunjay ji. He is the brain and man behind this conference. For felicitation of our guests, I invite our dear brother Dr. Ved Gulyani ji. He is retired as professor in English after 37 years of teaching experience, and since last 20 years he is connected with Brahma Kumari's Ishwari Vishwavidyalaya. He has wrote more than 1500 letters and articles. He has also been awarded 3 times for his writings by Indian Express. He is associated with Education Wing. He writes and edits our value education course books, and he is also editor of the first BK magazine, The World Renewal. Dr. Ved Gulyani.
Om Shanti. It's more than 20 years that a small coincidence brought me to Mount Abu. I had not intended, and I never knew about the Brahma Kumaris at that time. It was 6th February 1999 when I came to the Brahma Kumaris. And believe me, I till now feel that perhaps that was the only day I can call memorable in my life. Why? Because on that day I learnt about the Brahma Kumaris, got associated with them, and since then I have never looked back. And I have always felt that I am lucky that Baba selected me. It was he who brought me to this place, accepted me. And perhaps I feel when today our Madhurvani group were rendering the song in which the line was, Bhagyavan hai Bhagavan ka swikare satkar. It was for all of us. Bhagyavan hai Bhagavan ka swikare satkar. Satkar, I emphasize the word. Just imagine ke you come here and at the entrance God himself is there to welcome each one of us. How do you feel? Kaisa lagta hai? Paramatma khud darwaze pe khada hai aur aapko kehta hai, aao bachche, aao, aao. That was my feeling when I came to the Brahma Kumaris. And still I have that feeling. And if I ever regret something, it is that why I didn't come to the Mount Abu or to the Brahma Kumaris much earlier. I think with this gratitude, with this gratefulness, we should have the feeling of attending this conference, and when we go back, we should have that feeling. It is my duty to thank at this moment. I am reminded in the beginning, Dr. R.P. Gupta said, Mulla agar masjid mein Ram ko yaad kare, aur pujari mandir mein agar Rahim ko yaad kare, to sare jhagde hi mit jaye. मैं कहता हूं इसको थोड़ा ऐड करते हुए, यानी कोई ना कहे आपको कि आपने राम को या रहीम को याद करना है, लेकिन जरा अपने से पूछ के बताएं, हिंदू लोग भी और मुस्लिम भी, क्या दिवाली अली के बिना पूरी हो सकती है और रमजान राम के बिना हो सकता है? दिवाली लास्ट थ्री लेटर क्या है? ALI, अली। अली के बिना दिवाली नहीं है। और रमजान RAM, राम के बिना रमजान नहीं। बट द प्रॉब्लम इज वी हैवंट रियलाइज्ड दिस। हम अगर इस चीज को महसूस कर लें तो सारा समाज आध्यात्मिक ना हो जाए। थैंक यू डॉक्टर आरपी गुप्ता। मैं डॉक्टर बीके पांड्यामणि का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने हम सबको इंफॉर्मेशन दी कि किस तरह से ब्रह्मा कुमारीज देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर अध्यात्म शिक्षा को किस प्रकार से प्रमोट कर रही है। और केवल इतना नहीं कि सिर्फ आध्यात्मिकता के भाषण ही दिए जा रहे हैं, इन्होंने अथक मेहनत के साथ जो कोर्सेज डेवलप किए हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स है, पीजी डिप्लोमा है, एमएससी है, बीएससी है, काउंसलिंग है, हेल्थ केयर है, एमबीए है, यानी एज ही हैज टोल्ड अस, यानी देर आर मोर देन 15 कोर्सेज एंड वी हैव डन MOUs विद मोर देन 18 यूनिवर्सिटीज एंड 6 इंस्टीट्यूशंस। आई थैंक यू डॉक्टर पांड्यामणि। देन डॉक्टर मोहित गंभीर, ही स्टार्टेड विद ओम शांति। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड द हैप्पीनेस एनहांस्ड when he went on to define the meaning of the word and went on to the values, the 5 values, and then the lamentation that we people don't have those humanistic, spiritual, divine values in our life. One notable thing that he reminded all of us, that negativity breeds negativity. नकारात्मकता से नकारात्मकता ही पैदा होगी। यानी वी कैन नॉट लिव इन एन एज वेयर टूथ फॉर ए टूथ एंड आई फॉर एन आई, जहां ये नियम चलेगा, बुरा नहीं माने, आज के समाज में बाहर लगभग ऐसा ही नियम चलता है, वहां पर सुधार नहीं हो सकता। वहां पर केवल आध्यात्मिकता ही और डिवाइन वैल्यूज ही मनुष्य को मनुष्य, इंसान बना सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर गंभीर। एंड डॉक्टर प्रोफेसर हिमांशु पांड्या, किसी कारणवश उनको जाना पड़ा, ही मेंशन्ड दैट मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैज इनफैक्ट क्लटर्ड अवर माइंड्स। और उन्होंने ही कहा था कि डी क्लटरिंग ऑफ माइंड शायद पॉसिबल नहीं है। तो ये एक हमारे लिए, सबके लिए हिंट है कि हम अपने माइंड को किस प्रकार की क्लटरिंग अलाउ करें और किस प्रकार की ना करें, बिकॉज डी क्लटरिंग मे नॉट बी वेरी इजी। आई थैंक प्रोफेसर हिमांशु, ही इज नॉट हियर। देन हमारे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीलू देवी जी, डॉक्टर आरपी गुप्ता ने इनका परिचय देते हुए एक शब्द इस्तेमाल किया था, और मैं समझता हूं कि हमारे पास उससे ज्यादा बड़ा शब्द नहीं है, क्योंकि इनका व्यक्तित्व उस शब्द से भी कहीं ऊंचा है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा था वो लाजवाब हैं, दीदी का जवाब नहीं है। इनके हमने बहुत क्लासेस भी सुनी हैं, इनसे बातचीत करने का भी अवसर मिलता है, हर बात में हमें दिखता है कि एक आध्यात्मिकता, एक प्यार, एक स्नेह एक व्यक्तित्व से टपक रहा है। जब यहां बोलते हुए इन्होंने कहा कि वक्त है हमें सोचना चाहिए, आत्मा क्या है, मैं क्या हूं, परमात्मा कौन है, इसी प्रकार जीवन क्या है और जीवन क्यों है। शायद हम सुन के इन बातों को समझ लेते हैं, हां ये बातें हैं, लेकिन हम जरा सोच के जरूर देखें। दीदी ने इंस्पायर किया है हमें और हम तो सब इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो वी शुड थिंक कि जीवन क्यों, मैं क्यों हूं, व्हाई आई एम व्हाट आई एम। मैं कुछ और भी हो सकता था, मैं इंसान ना हो कि शायद बिल्कुल कुछ और ही होता, लेकिन प्रश्न ये है कि मैं आज जहां हूं, जो कर रहा हूं, वो क्या है, क्यों है। क्या वो आइसोलेटेड है, किसी बहुत बड़े ड्रामा का एक पार्ट है। जब तक हम इन प्रश्नों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक जो है अंदर की अवेकनिंग, दीदी ने बोला था कि बाहर ढूंढने से नहीं मिलने वाला, जो कुछ है हमारे अंदर है, तो उसी अंदर को जाकर देखे ढूंढे तो जरूर मिलेगा, जवाब भी मिलेगा। थैंक यू दीदी, आपने बहुत अवेकनिंग की बात कही और शायद हम सब थोड़ा बहुत इसकी टचिंग लेकर अपने अंदर अवेकनिंग पैदा कर पाएंगे। थैंक यू वंस अगेन। डॉक्टर गणपति भास्करन जी, इन्होंने साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के म्यूचुअल रिलेशंस पर बात की और बीच में इन्होंने क्रॉनिकल पर्सपेक्टिव देते हुए बताया कि इनफैक्ट द ओरिजिन ऑफ साइंस इज रूटेड इन स्पिरिचुअलिटी। विज्ञान का जन्म ही अध्यात्म से है। जब उन्होंने कहा कि रिलीजन विज्ञान के विरुद्ध था कभी, या विज्ञान रिलीजन के विरुद्ध रहा कभी, तो दोनों इंटेग्रेटेड रहे हैं। आज हमने इनको अलग कर दिया है, हमने इनको वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांट दिया है और हम महसूस करते हैं कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। नो, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर सेइंग ऑल दिस। अब मैं, अगर हमारे अपने राजयोगी डॉक्टर ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी के लिए कुछ भी कहूं बहुत कम है। For the last more than a decade, I have been associated with him, and I have found that he is not only dedicated, hard-working, and determined, but he is quite humble and down to the earth as well. कई बार हम समझते हैं जो आदमी determined है, hard-working है, वो किसी की बात सुनेगा, नहीं नहीं नहीं। For all these years, I have never heard a no from him. Either for me or for anybody. मृत्युंजय भाई कभी किसी को ना नहीं कहते। आप कोई भी बात लेकर जाइए, कोई भी सजेशन दीजिए, कोई भी रिक्वेस्ट कीजिए, कोई भी सुविधा प्राप्त करने की बात कीजिए, ही इज ऑल रेडी टू हेल्प यू। और इनका जो लक्ष्य, जैसा कि इन्होंने बोला, गोल ऑफ एजुकेशन, यानी दैट इज व्हाट ही इज डेडिकेटेडली डूइंग। And being a member of his team, I feel that we are not being able to do as much as his expectations are. He always says कि समाज वो चाहिए जिसके अंदर ना corruption है, ना injustice है, ना crime है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जैसा कि इन्होंने भाषण में कहा, पवित्रता है, आध्यात्मिकता है, अच्छाई है, इंसानियत है। दैट इज व्हाट ही विशेस। भाई साहब, आई थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दीज इंस्पायरिंग वर्ड्स। एंड फाइनली आई मस्ट थैंक सिस्टर बीके किरण, जो इतने समय से मंच का संचालन कर रही हैं अच्छी तरह से। बीच में बात करते हुए इन्होंने हमारे सुप्रीम टीचर परमात्मा शिव बाबा के बारे में कहा और कहा कि देखो, परमात्मा जब हमें शिक्षा दे रहा है, सेल्फ अवेकनिंग कर रहा है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की शिक्षा दे रहा है, तो हमें इधर उधर जाने की जरूरत है क्या। Dhanyavad, sister. Thank you very much for conducting the stage so efficiently. मैं जरूर उन सब का धन्यवाद करूंगा जो इस प्रोग्राम को बनाने में माइक है, लाइट है, सीटिंग है, एवरीथिंग. और सबसे अधिक धन्यवाद आप सब आत्माओं का, आप सब बहन भाइयों का जिन्होंने इतनी दूर दूर से भारत के कोने कोनों से आकर यहां पर जो है इस स्थान पर ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, स्थान की शोभा भी बढ़ा रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं. आप सबका भी बहुत 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 धन्यवाद इस उम्मीद के साथ कि आप यहां से जरूर कुछ न कुछ लेकर जाएंगे और उसे अपने जीवन में धारण करेंगे. अंत में मैं आपको शायद हैरानी भी हो लेकिन अंत में मैं अपना भी अपने शरीर का भी धन्यवाद करूंगा जो परमात्मा ने मुझ आत्मा को दिया कि ये शरीर मेरी आत्मा के डायरेक्शन पर सेवा करने के काबिल हो सके जिसके कारण मैं आपके सामने खड़ा होकर दो शब्द बोल पाया. थैंक यू वेरी मच ऑल द सेम.